शास्त्री, आज के इस सत्र को आरंभ करते हुए आज के मेहमानों को मंचासीन करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। आदरणीय हॉनरेबल श्री महादेव जंकार जी, आदरणीय श्री रवेला किशोर बाबू जी, आदरणीय श्री ललित कुमार जी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, प्रोफेसर राधा मोहन दास वाइस चांसलर फ्रॉम ओडिशा, मिस्टर ठाकुर सत्यप्रकाश जी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। अपने मीडिया क्षेत्र से मिस्टर राजीव रंजन नाग जी, मिस्टर अनिल राय जी, डॉक्टर एम एच गजाली जी, मिस्टर राजीव निशाना जी, आदरणीय राजयोगिनी बीके सरला दीदी जी, आदरणीय राजयोगिनी बीके चक्रधारी दीदी जी, आदरणीय राजयोगिनी बीके सुषमा दीदी जी, मोहन सिंगल भाई जी और भरत भाई जी से निवेदन करती हूँ मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय वेद गुलियानी जी से भी निवेदन करती हूँ। आज के इस सत्र के चीफ गेस्ट मोस्ट रेस्पेक्टेड कालराज मिश्रा जी फ्रॉम द कैबिनेट मिनिस्ट्री, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। वैसे इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का शीर्षक है गॉड्स विजडम फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी हम कार्य शुरू करते हैं परमात्मा की स्मृति से करते हैं, परमात्मा की याद से करते हैं, वो सफलता उस कार्य में निश्चित हो जाता है, क्योंकि परमात्मा शक्ति की आवश्यकता है इस कलयुगी जगत में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए। वो आंतरिक शक्ति की जब जरूरत होती है तो सर्व शक्तियों का स्रोत परमपिता परमात्मा के दिव्य स्मृति से ही हम उन आंतरिक शक्तियों को धारण कर सकते हैं। तो इसीलिए हम दो मिनट उस परमपिता परमात्मा के दिव्य स्मृति में बैठते हैं, फिर इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं।
गुणों
आप सभी का स्वागत करने के लिए रशिया से एक ब्रह्मा कुमारी बहन बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत करने जा रही है। आप बचपन से ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़ करके राज्यों का अभ्यास आप करते हैं, अपने राज्यों का सेंटर में आप सेवा दे रहे हैं पिछले 10 साल से, और ये जो डांस है प्रस्तुत करने जा रहे हैं प्यूरिटी के बारे में है, आत्मा की सत्यता पवित्रता के आधार से हम कैसे जीवन में सब मूल्यों को धारण कर सकते हैं। तो मुख्य ये डांस सत्यता और पवित्रता के बारे में है।
Thank you.
बहुत सुंदर. अभी मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ आदरणीय राज्ययोगी ब्रह्म कुमार मोहन सिंघल भाई जी से. आप सभी का शब्दों के द्वारा स्वागत करें. आदरणीय मोहन सिंघल भाई जी पिछले 50 साल से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं और गहन तपस्या और राज्ययोग का अभ्यास आप करते हैं. वर्तमान समय माउंट अबू में जो ज्ञान सरोवर है, आप वहां परमानेंटली स्थित होकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं. कुछ साल पूर्व ओएनजीसी से आप निवृत्त होकर के यहाँ स्थायी रूप से माउंट अबू में स्थित हुए हैं. इस ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के साथ एक सिस्टर कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है, राज्ययोग एजुकेशनल रिसर्च फाउंडेशन. उसके अंतर्गत हमारे 20 विंग्स हैं जो अलग अलग प्रोफेशंस को हम कैटर करते हैं. उसमें से एक विंग है साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग. आप उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं. पर्यावरण के प्रति आप बहुत योगदान दिए हैं, जिस कारण से अर्जुन सिंह जी से आपको पर्यावरण शी का अवार्ड भी आपको मिला हुआ है. ऐसे महान अस्थि से मैं निवेदन करती हूँ आप सभी का स्वागत शब्दों से करें आदरणीय राज्ययोगी ब्रह्म कुमार मोहन सिंघल भाई जी.
ओम शांति. एक बार सब मिलकर के पुनः गहरी श्वास अंदर लेकर और श्वास को निकालते हुए ओम शांति कहेंगे. ओ शांति. अरावली पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसे हुए इस भव्य पावन मन भावन शांतिवन परिसर में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत अपार खुशी का अनुभव हो रहा है, क्योंकि यह केवल एक परिसर ही नहीं है बल्कि एक ऐसा स्थान है जिसे आपने स्वयं भी महसूस किया होगा कि जैसे ही आपने यहाँ प्रवेश किया होगा, यहाँ पर आते ही आपको एक अद्भुत ही शांति का, शक्ति का, पवित्रता का एहसास हुआ होगा. और यह परिसर जो है अपने आप में एक बहुत विशेषता रखता है. लगभग 60 एकड़ में बसा हुआ यह परिसर, जिसमें शांतिवन, मनमोहनी और आनंद सरोवर आदि संपूर्ण परिसर तीनों आसपास के आ जाते हैं, उसमें ये बसा हुआ है यह परिसर. यहाँ पर रहने वाले जो ब्रह्मा कुमार भाई बहने हैं उनके पवित्र स्पंदनों से सदैव प्रकाशित और शक्तिशाली बना रहता है. इसलिए जो भी यहाँ पर आते हैं वो एक इस प्रकार की अनुभूति करते हैं. आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे आज के मुख्य अतिथि भ्राता कलराज मिश्रा जी, जो यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, न्यू दिल्ली से आए हैं, तथा भ्राता कविंद्र गुप्ता जी, स्पीकर J&K लेजिस्लेटिव असेंबली, उनकी अनुपस्थिति में ही वो बहुत शीघ्र ही यहाँ पधारने वाले हैं. मैं उनका बहुत 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 हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ. आज इस सत्र में हम सबके मध्य बहुत बहुत विचारक अनुभवी वक्ता यहाँ पर पधारे हैं. भ्राता महादेव जंकार जी, भ्राता रवेला किशोर बाबू जी, भ्राता ललित कुमार जी, जो कि बहन जी ने यहाँ पर बताया आपको, वह सब भी अपने विचार अपनी शुभकामनाएं रखेंगे। यहाँ पर इस परिसर में जो हमारी दादियां हैं वो भी बहुत कम समय में पधारने वाली हैं। इस संसार को पुरुष और प्रकृति का खेल कहा जाता है। पुरुष अर्थात आत्मा, प्रकृति अर्थात पांच तत्वों से बना यह शरीर, और यदि इसे बेहद के सेंस में लें तो परम पुरुष, परम पिता परमात्मा और प्रकृति, ये जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, जो पंच तत्व हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ, यह भी एक खेल है। और इस खेल में हम सब यहाँ पर अपना पार्ट बजा रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। तो यह इस कॉन्फ्रेंस का चौथा सत्र है। आपने हमारी पवित्र दादियों से तो सुना ही पिछले तीन सत्रों में, और आगे भी आने वाले दो दिनों में सुनेंगे। तो यह तो पुरुष के द्वारा, आत्मा पुरुष के द्वारा संदेश और आपका स्वागत होता रहा है और होता रहेगा। लेकिन यह जो प्रकृति है, यह प्रकृति के पांच तत्व भी यहाँ पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। और यह प्रकृति के पांच तत्व स्वागत के साथ साथ आपको एक बहुत छोटा सा संदेश भी दे रहे हैं। हमारा जो जल तत्व है वह यह संदेश दे रहा है कि जल की तरह हम फ्लेक्सिबल बने, एडजस्टमेंट नेचर हो, सदैव जल आगे बढ़ता रहता है, शीतलता होती है। तो यह जल तत्व हमें, हमारे आप सबके मेहमानों को यह संदेश भी दे रहा है स्वागत करते हुए कि हम भी उसकी तरह यह गुण धारण करें और जल तत्व को मित्र बनाएं। पृथ्वी तत्व यह संदेश दे रहा है कि पृथ्वी दाता है, उससे हमें सारा अन्न, सब कुछ, जल, सब्जी, फल, एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम द मदर अर्थ। और इस कारण से ये जो धरती तत्व है, इसका संदेश भी हम अपने अंदर ग्रहण करें कि हम भी जीवन में दाता बन के सबको सुख, शांति, पवित्रता के स्पंदन फैलाते चलें। धरती को माँ भी कहते हैं, और माँ तो प्रेम का एक दूसरा नाम है। कहा है किसी ने बहुत ठीक कि खुसरो दरिया प्रेम का, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी जाकी धार, जो तैरा वो डूब गया, जो डूबा सो पार। इस प्रेम के दरिया में जो यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें जो डूब जाता है वह भव सागर से पार हो जाता है। यहाँ पर आप यह वातावरण चैतन्यता में देख ही रहे हैं। इसी प्रकार के वायु तत्व तो हमें हल्केपन का सूचक है। अग्नि तत्व सूर्य वह इस रीति से स्वागत कर रहा है, रूपांतरण जो हमारी कॉन्फ्रेंस ही है, ईश्वर की ज्ञान के द्वारा रूपांतरण, अग्नि में जो चीज डाली जाती है वह उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर भी जो योग सिखाया जाता है, और आप जो दो दिन से योग शिविर कर रहे हैं उसमें आपने देखा होगा, आपको अपने अंदर ही अंदर रूपांतरण की अनुभूति हो रही होगी। और इसी प्रकार से आकाश तत्व हमें यह संदेश दे रहा है कि हम आकाश की तरह विशाल हृदय बने, और जितना जितना विशालता धारण करते जाएंगे दूसरे की कमी कमजोरी दिखेगी नहीं, और हम क्षमा के सागर बनते चले जाएंगे। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं, क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। तो इस प्रकार से ये तत्व आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं, और साथ ही साथ यह संदेश भी दे रहे हैं कि आप यहाँ पर आए हैं, इन संदेशों को अपने अंदर धारण करें। मैं एक बात कह के समाप्त करना चाहूंगा कि यह परिसर बहुत काफी अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है। सोलर एनर्जी का तो आपने देखा होगा, जो इंडिया वन प्रोजेक्ट न देखा हो वो देखिए जरूर। यहाँ पर पानी गर्म तो होता है, भोजन भी बनाया जाता है, और साथ साथ इमरजेंसी लाइट्स आदि ये सब होती हैं। लेकिन सोल एनर्जी का जो कि कई वक्ताओं ने रेफर किया, उसके द्वारा कैसे हम अपने विचारों को परिवर्तित कर देते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जितना भी किचन वेस्ट, टॉयलेट वेस्ट होता है उसको रिसाइकिल करके नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी वेस्ट टू बेस्ट थॉट्स कैसे बनाए जाएं। वो यहाँ पर विशेष करके हर सत्र में आपको बताया जाता है। मैं आपका और अधिक समय न लेकर एक बार पुनः मंच पर विराजित जितने हमारे महानुभाव हैं उन सबका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और साथ ही साथ सभा में बैठे हुए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद।
आदरणीय मोहन सिंघल भाई जी का भी स्वागत है। मैं गोदावरी दीदी से निवेदन करती हूँ मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। ब्रह्म कुमारी संस्था पिछले 80 सालों से विश्व में शांति लाने का कार्य कर रहा है। 1986 में जब यूएन के तरफ से वर्ल्ड पीस ईयर के रूप में मनाया गया था 1986, उस साल ब्रह्म कुमारी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया था, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील, जिसके अंतर्गत हमने ये संदेश दिया था अगर हर व्यक्ति हर दिन एक मिनट विश्व शांति के लिए योगदान दे तो जरूर हम इस संसार में शांति स्थापित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हमने मिलियंस ऑफ मिनट्स कलेक्ट किए थे। बहुत सारे लोग उमंग उत्साह से हर दिन एक मिनट विश्व शांति के लिए योगदान दे रहे थे, जिसके फलस्वरूप ब्रह्म कुमारी के उस समय के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी को पीस मेडल से नवाजा गया था, इंटरनेशनल पीस मेडल से नवाजा गया था। और उसके साथ साथ 6 और कंट्रीज ने भी इस संस्था के कार्यों को रिकॉग्नाइज करते हुए पीस अवार्ड उन्होंने दिया था। तो तब से लेकर के यही हम नारा दे रहे हैं संसार को कि स्व परिवर्तन से हम विश्व परिवर्तन ला सकते हैं, बूंद बूंद से हम सागर बना सकते हैं। दूसरों पर हम दोष दे इसके बजाय हम अपने आप को सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से, सर्व वैल्यू मूल्यों से जब हम अपने आप को संपन्न करते हैं, संपूर्ण करते हैं, धारण करते हैं, तो हमारे कर्मों में उन मूल्यों को हम दिखा सकते हैं, जिसके आधार से हम संसार में लोगों को हम इंस्पायर कर सकते, प्रेरणा दे सकते हैं उन मूल्यों को धारण करने के लिए। अभी मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करने जा रही हूँ आदरणीय ललित कुमार जी, हु इज द आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट एंड चेयरमैन ऑफ CEPTAM, DRDO एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मोस्ट रेस्पेक्टेड श्री ललित कुमार जी।
आदरणीय परम पूज्य दादी जानकी जी, आदरण परम पूज्य दादी हृदय मोहिनी जी, दादी यहाँ जो मंच पर उपस्थित हैं और इस सभागार में उपस्थित हैं, मिनिस्टर श्री कालराज मिश्रा जी जो कि आने वाले हैं और ऑनरेबल मिनिस्टर जानकार जी जो इस समय मौजूद हैं, और मंच पर आज ही सीन विशिष्ट व्यक्ति मैं आप सभी के सानिध्य में होकर स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं आप सभी का सानिध्य है और ऑडियंस में बैठे हुए डिस्टिंग्विश्ड विजिटर्स जो विभिन्न देशों विदेश से आए हैं उन सभी को मेरा नमस्कार, ओम शांति। मुझे ये बहुत हर्ष की बात है मेरे लिए कि दादा लेखराज जी जिन्होंने 1937 में 80 साल पूर्व एक छोटी सी ओम मंडली से शुरुआत की थी, उनका समुदाय जो कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात है, वह कितनी प्रगति 80 वर्ष में कर चुका है वो बिल्कुल मेरे लिए माइंड बॉगलिंग है। 130 से अधिक देशों में उसकी पहुंच है और हर शहर में हिंदुस्तान के हर मोहल्ले में उनका एक सेंटर है। और आज के युग में जबकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस फॉल आउट हो रहे हैं, यह इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ता जा रहा है, प्रगति करता जा रहा है और यह समारोह हो इसकी एक बेमिसाल है। इस अवसर पर यह समारोह 2 दिन से चालू है, इस अवसर पर बहुत से मनीषियों ल्यूमिनरीज प्राइम मिनिस्टर अडवाणी जी और बहुत मनीषियों ने अपने विचार रखे और मुझे उन विचारों को सुनकर मेरे लिए बहुत अच्छा एक लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ। आई एम रियली लकी टू बी हियर एंड दिस स्टार स्टडेड फंक्शन इन दिस ग्रैंड हॉल एंड एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज रन मोस्टली बाई द मातृशक्ति वीमन पावर इज रियली समथिंग वेरी अमेजिंग माइंड बॉगलिंग आश्चर्यजनक मेरे लिए है। हम घर में जरूर देखते हैं कि माताएं पूरा घर चलाती हैं, लेकिन इतना बड़ा संस्थान जो देश विदेश में फैला उसको चला पा रही हैं, ये हमारे लिए बहुत ही उदाहरणीय है और हम इससे बहुत सीख लेते हैं। मेरा स्वयं का ईश्वरीय आश्रम से, ईश्वरीय विश्वविद्यालय से बहुत अल्प समय का जुड़ाव है। आशा बहन जी जो मानेसर में ओम शांति रिट्रीट की अधिष्ठाता हैं, उन्होंने मुझे वहां पर 1 दिन 2 दिन रहने के लिए बुलाया। मैं वहां गया, वहां मुझे पूरी जो फिलॉसफी है ओम शांति का, जो फिलॉसफी है ब्रह्म कुमारी की फिलॉसफी है, उसका साक्षात्कार और उसकी मुझे थोड़ी इंट्रोडक्शन मिला। उसके बाद मेरे और भाई बीके भाइयों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं यहां आऊं, मैं यहां शनिवार से हूं और मैंने यहां मधुबन शांतिवन, मधुबन में शांत सरोवर, पांडव भवन, शिखर जहां बाबा बैठ करके करते थे, बाबा की कुटियां, यहां का तपोवन, यहां की पूरी जो इनकी सोलर एनर्जी का और जितने प्रयास हैं इस एरिया को बिल्कुल परिवर्तित करने का, एक गोल्डन वर्ल्ड बनाने का, उसके सपने को साकार होते देखा। मुझे जो एक चीज ने बहुत, मैं एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट साइंटिफिक डिपार्टमेंट से आता हूं, एक चीज ने जिसने बहुत प्रभावित किया वो ये कि यहां मैनेजमेंट चल रहा है इतने विशाल कार्यक्रम का, लेकिन कोई मैनेजर नजर नहीं आ रहा है। मैंने ये देखा कि यहां पर हर व्यक्ति अपने आप से सेल्फ मोटिवेटेड है और वह सब कार्य सुचारू रूप से, उसको पता है क्या करना है और कर रहे हैं। दूसरी जो चीज स्ट्राइकिंग है, इतने हजारों लोग आए हैं, न कहीं गंदगी है, न कोई झमेला है, सब कार्य सुचारू रूप से, स्वच्छता से, परिपूर्णता से, सब समय से हो रहा है, बिल्कुल मैनेजमेंट के लिए ये हम लोग के लिए एक लेसन है। यहां जो भाई बहन है ब्रह्म कुमारी, वो इमैक्युलेट स्पॉटलेस क्लीन प्योर ड्रेस में दिखाई देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो मुझे प्रभावित करता है वो उनके चेहरे पर सौम्यता, उनका स्माइल और हर समय किसी को भी मदद करने का उनका जो एक जज्बा है और उनकी आदत है वो बहुत प्रभावित की है। अगर ये सब हो रहा है तो ये तभी पॉसिबल है कि यहाँ का वातावरण, यहाँ की सीख ऐसी है कि अगर हम सब उसको सीखें तो हम सचमुच ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी जैसे बन पाएंगे। मैं स्वयं एक वैज्ञानिक डिपार्टमेंट वैज्ञानिक हूँ, विज्ञान डिपार्टमेंट से आता हूँ, तो मैं हमेशा जब विज्ञान करता था तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि स्पिरिचुअलिटी की या इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत है। विज्ञान की एक रीति है कि हम थ्योरीज या पॉस्टुलेट्स जो भी होते हैं उनको हमेशा एक मैथमेटिकल या एक्सपेरिमेंट कसौटी पे जब तक वो खरे नहीं उतरते तब तक नहीं मानते हैं। तब तक उनको मानते रहते हैं, लेकिन जब तक वो अगर सफल ना हो जाए तो उनको हम नहीं मानते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है वो एक ऐसी चीज है कि सिर्फ फेथ की चीज है। उसको आप माने तो माने और नहीं माने तो न माने। उसको हम चाहते हैं कि प्रूव करें, तो प्रूव करने के बारे में ये कहा जाता है कि ये ऐसी चीज है कि जिसका साक्षात्कार उससे हो गया है उसके पास न तो शब्द होंगे न उसको बताने के लिए एग्जाम्पल होगा, और अगर वो आपको बताएगा तो ना आप समझ पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है जो स्पिरिचुअलिटी होती है। दूसरी चीज ये है कि हम ये देखते हैं कि विज्ञान, आज के रोजमर्रा विज्ञान में हम लोग लॉज ऑफ नेचर से काम चलाते हैं, पर जब हम विज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं, कॉस्मोलॉजी, हाई एनर्जी पार्टिकल, ये पता लगाने का कोशिश करते हैं कि कब ब्रह्मांड के शुरू में क्या हुआ, कैसे क्रिएट हुआ, तो हम पाते हैं कि हमारा विज्ञान बिल्कुल अधूरा है, विज्ञान पूरा नहीं है। दूसरी बात यह है कि विज्ञान जितना भी है वो सिर्फ हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है ह्यूमंस का माइंड, सिर्फ उसी के बल पर कुछ कर सकता है, उससे आगे उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन आध्यात्मिकता में माइंड से परे कॉन्शियसनेस, सोल की शक्ति है जो कि इनफाइनाइट है। दो एग्जाम्पल्स मैं देना चाहूंगा, समय बहुत कम है, कि स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलेटर सर्न में है, और वहां पर आपने कुछ साल पहले सुना होगा कि गॉड पार्टिकल की डिस्कवरी भी वहां पर हुई है। उस संस्थान के प्रांगण में आपको, कुछ लोगों को पता भी होगा लेकिन आप लोग जानकर चकित होंगे कि वहां पर एक स्टैचू है जो शिवा नटराज का है। उसको होने का एक कारण ये है कि वैज्ञानिकों ने, फिजिसिस्ट ने ये पाया कि शिवा का जो डांस ऑफ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन है उससे हमारे विज्ञान की जो पार्टिकल स्मैशर है जो वहां पर, उसकी बड़ी सिमिलैरिटी है, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स को वो स्मैश करता है और नए पार्टिकल्स को, नए एलिमेंट्स को जन्म देता है। दूसरी चीज जो बहुत जग विज्ञात है वो ये है कि स्पेस में अगर कोई साउंड है या वाइब्रेशन है तो उसको कहा जाता है कि वो ओम है। तो विज्ञान ने इन दो चीजों को माना है, और मैं देखता हूं कि हमारे जो ईश्वरीय आश्रम है ब्रह्म कुमारी जी का, उसमें शक्ति ओम की है और उसमें शक्ति शिवा बाबा की है। तो डेफिनेटली मैं ये सोचता हूं कि हमारा इस चीज से, इस सीख से और इस जो फिलॉसफी है उससे काफी भला हो सकता है। ये हम सब जानते हैं कि विज्ञान बहुत प्रगति कर रहा है, नए नए गैजेट्स, नई नई चीज आ रही हैं, इंटरनेट आ रहा है, लेकिन मैं देखता हूं कि आप और इसी तरह के कई जो समुदाय हैं वो इंसान को सही रास्ते पर लाने के लिए जरूरी हैं, क्योंकि हम लोग भटक रहे हैं, हम लोग अपने कंफर्ट जोन में आकर के अब इन चीजों के गुलाम बन रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि हम सही रास्ते पर चल पाए या ना चल पाए ये हमें ज्ञान नहीं है। तो इस ज्ञान को कि हम सही रास्ते पर चलें, विज्ञान को सही दिशा में इस्तेमाल करें, जरूरी है कि हमें मॉरल एजुकेशन और स्पिरिचुअल एजुकेशन हमारे लिए जरूरी है। मुझे बहुत हर्ष है कि बीके मोहन सिंगल जी का ज्ञान सरोवर इस कार्य में बहुत आगे बढ़ रहा है और साइंस स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट कर रहा है, और इसमें मुझे बहुत खुशी है कि आपका ये संस्थान आगे बढ़े और वैज्ञानिकों को और बच्चों को शुरू के बचपन में ही स्पिरिचुअलिटी की जो है ट्रेनिंग दे सकें। तो उससे, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा और आपकी बहन जी ने भी कल कहा, जानकी देवी जी ने भी, दादी जी ने कहा कि अगर ये सब स्कूल कॉलेजेस में बचपन से ही पढ़ाया जाए तो हमारा जो समाज होगा वो एक अद्भुत समाज होगा, वो एक सचमुच ब्रह्म कुमारी का जो एक जो प्रोफेसी है कि एक स्वर्ण युग आएगा, और उस स्वर्ण युग को आने वाले, लाने वाले हम सब, हमारी नई जनरेशन होगी। इस सबके साथ ही मैं इस अवसर पर, 80वें जन्मदिवस पर, इस संस्थान को, ब्रह्म कुमारी को अपनी सब शुभकामनाएं देता हूं। वैज्ञानिक वर्ल्ड की तरफ से, मेरे साथी वैज्ञानिकों की तरफ से, डीआरडीओ की तरफ से मैं आपको शुभकामना देता हूं। आप अपने प्रयास में सफल रहें और हम लोग भी इस दिशा में जितना कुछ इस्तेमाल होगा कर सकते हैं, इस नॉलेज को करने की कोशिश करेंगे। हमारे सोल्जर्स को बड़ी मुश्किल होती हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं बड़े कठिन परिस्थिति में, ऐसे में सिर्फ उनकी आत्मिक ताकत ही उनको एक शक्ति दे सकती है। धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ललित कुमार जी का, आपने बहुत सुंदर कहा कि ऑलवेज साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। वैसे वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट ने भी कहा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने भी कहा है कि रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड एंड साइंस विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज लेम। जब दोनों हाथ मिलाए, जब दोनों साथ साथ चले, तो हम जरूर इस संसार में शांति ला सकते हैं। क्योंकि जब हम साइंस को ज्यादा महत्व देते हैं और स्पिरिचुअलिटी को हम नेग्लेक्ट करते हैं, तो भौतिकता के तरफ हम चले जाते हैं। ऊपरी चांद चकौन वो सब कुछ है, लेकिन अंदर की जो सोल है, वो आंतरिक शक्ति है, उसको कहीं ना कहीं हम खो लेते हैं। और केवल हम रिलीजन को ज्यादा महत्व दें और लॉजिक हम अप्लाई ना करें, तो वहां ब्लाइंड फेथ आ जाता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ रिलीजन। स्पिरिचुअलिटी हर धर्म के फाउंडेशन में है, नींव में है। स्पिरिचुअलिटी माना आध्यात्मिकता, माना अपने आद्य को जानना, अपने आप को पहचान कर अपनी आंतरिक शक्तियों को विकसित करना। जब अपने आप को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो खुदा को भी हम जान सकते हैं, उनके साथ हम कनेक्शन जोड़ सकते हैं। यही संदेश ब्रह्म कुमारी बहने और भाई देते आए हैं। स्पिरिचुअलिटी को हम हर सोसाइटी के हर क्षेत्र में जरूरत हम देख रहे हैं, और इवन प्रोफेशनल पीपल नीड स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्याएं आती है, हर समस्या का समाधान केवल स्पिरिचुअलिटी के पास है। जब हम अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को धारण करते हैं, तो हम हर समस्या का समाधान हम ढूंढ सकते हैं। अभी मैं निवेदन करने जा रही हूँ अगले वक्ता को, आदरणीय मिस्टर राजीव रंजन नाग जी, हु इज अ वेटरन जर्नलिस्ट। आपके इस कार्यक्रम के प्रति इंस्पिरेशन और दिल की पुकार हम सुनना चाहते हैं। मोस्ट रेस्पेक्टेड मिस्टर राजीव रंजन नाग जी।
ओम शांति। हमारे हिस्से में 180 सेकंड्स हैं, सूत्रों में ही बात हो सकती है इतने शब्द में, कम समय में। तपस्या और संघर्ष की कहानी राजयोगिनी जानकी जी, दीदी हृदय मोहिनी जी, मृत्युंजय भाई मंच पे बैठे महानुभाव, आज हम संघर्ष और तपस्या के 80 साल पूरा कर रहे हैं, और शायद ये उन्हीं वर्षों में और उससे पहले ये शुरू हुआ था जब भारत आजादी के संघर्ष का सामना कर रहा था 10 साल पहले। आज हम 70 साल के हुए, हमारा लोकतंत्र 70 साल का हुआ, और उसके 10 साल पहले से ब्रह्मा बाबा ने विश्व शांति, भाईचारा, अध्यात्म की परिकल्पना के साथ जो यात्रा शुरू की थी वो आज एक अद्भुत कहानी का रूप ले चुका है। दुनिया के 130 देशों में यह संगठन अगर आज है तो शायद इसलिए कि इसका समर्पण, त्याग, बंधुत्व और मित्रवत व्यवहार इस संगठन की मूल पूंजी है। योग इस संगठन की मूल पूंजी इसलिए है क्योंकि दुनिया के 180 कंट्रीज ने इस योगा को एक्सेप्ट किया और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लेकर के साल का एक दिन 21 जून निर्धारित किया। यह हमारी पूंजी थी, यह भारत की विरासत थी जिसको दुनिया के 166 कंट्री ने एक्सेप्ट किया। आज अमेरिकी राष्ट्रपति भी योगा करते हुए दिखते हैं, तो शायद इसलिए क्योंकि योगा में जो शक्ति है उसको दुनिया ने एक्सेप्ट किया है और भी देश इसको आने वाले दिनों में एक्सेप्ट करने को मजबूर होंगे और शायद इसलिए हमें इसकी तसल्ली है। आज जिन दो शब्द हैं ओम शांति, आज इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हम दुनिया के निशाने पे हैं शायद इसलिए क्योंकि हम दुनिया में तेजी से बढ़ते हुए 10वें इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री हैं। दुनिया के देश हमारी तरफ इसलिए भी देख रहे हैं कि उन्हें लगता है कि भारत की जो श्रम शक्ति है, जो विद्या है, जो स्किल है, वो दुनिया के देश उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और दुनिया के देशों में हमने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसलिए भी ओम शांति की जब हम बात करते हैं तो इसकी जरूरत इसलिए भी है कि आज का समाज बुरी तरह तनाव से ग्रस्त है और एक शांति की तलाश सबको रहती है। जब मैं दिल्ली से आया तो जब आता हूं यहां, मैं कई बार आया हूं तो मुझे यहां आके एक सुकून मिलता है। ललित जी ने एक बात कही कि एक अदृश्य ताकतें ये सारा व्यवस्था कर रही होती हैं, न तो उसमें कोई MBA किया हुआ मैनेजर दिखता है और न जनरल मैनेजर। तो निश्चित रूप से आपकी जो सोच है, आपका जो संगठन शक्ति है, आपकी जो तपस्या है और जो स्किल है उसका ये परिणाम हमें देखने को मिला है। मृत्युंजय भाई ने जब मुझको 1 महीने पहले हम लोग यहाँ के किसी प्रोग्राम के बारे में विचार कर रहे थे किसी एक इशू पर, तो हमने ये कहा कि अगर मीडिया को आप बुला रहे हैं तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में अगर हम चौथे स्तंभ हैं डेमोक्रेसी में ज्यूडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बाद, तो उस मुकाम पर पहुंचने वाले लोग और मीडिया का जितना सहयोग रहा है इस संगठन के लिए, तो शायद ये दुनिया का पहला ऐसा संगठन है जिसको मीडिया ने जगह दी है और मीडिया को लगातार संपर्क में बनाए रखा है। यहां आने से पहले मैं गूगल देख रहा था, दुनिया में कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो महिलाओं द्वारा संचालित है। यह दुनिया का एकमात्र संगठन है जो महिलाओं द्वारा संगठित है। इस्लामिक देशों में कुछ जगह महिलाएं छोटे मोटे ग्रुप चलाती हैं, लेकिन जब हम अध्यात्म और स्पिरिचुअल की बात करते हैं तो वहां उनका दूसरा इशू उठता है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अभी जब हम बात करते हैं ब्रह्मा कुमारीज की, तो मुझे लगता है कि इस 80 ईयर में यह कार्यक्रम पूरे साल चलना चाहिए। डिफरेंट सेंटर पर भी एक्टिविटीज दिखनी चाहिए क्योंकि यह एक सेंटर है जहां से देश विदेश के लोग आ तो गए, लेकिन आपके जो सेंटर्स हैं डिफरेंट स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, उसके नीचे के लेवल पे वहां के लोगों का जुड़ाव के लिए मुझे लगता है कि वहां भी एक्टिविटीज होनी चाहिए। शायद मृत्युंजय भाई ने इस दिशा में कुछ पहल भी की होगी, सोचा भी होगा। एक और चीज, चूंकि मैं मीडिया से आता हूं और तो मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि मीडिया आज व्यापारिक घरानों के हाथ में आ गया है और उसका विपरीत असर यह हुआ है कि बाजार तो हावी हो गया है मीडिया पे, हम जिन उद्देश्यों से हमने मीडिया और पत्रकारिता की शुरुआत की थी, आज वो उद्देश्य भटकता हुआ दिख रहा है। शायद इसलिए कि बड़े व्यापारी घरानों ने बड़े बड़े चैनल्स को अपने हिस्से में कर लिया है, और वो सहज भाव से उन्होंने ऐसा नहीं किया है, उनके और भी बिजनेस हैं, उसका वो प्रोटेक्शन करते, उसके थ्रू जो कुछ और भी काम करते हैं वो मीडिया के जरिए उसको वो प्रमोट करते हैं। ये एक गलत ट्रेंड, खतरनाक ट्रेंड है जो आने वाले दिनों में और उसके लिए बढ़ेंगी। पहले सामाजिक आंदोलनों में लोग बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते थे, मेघा पाटेकर ने जितना संघर्ष किया मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उनकी 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 संघर्ष की यात्रा आप नहीं दिखाई देती टीवी पे, क्योंकि वो टीआरपी नहीं दे पाती, अखबारों में जगह नहीं मिलने से सोशल मूवमेंट वीक हुए हैं, और यह एक गलत ट्रेंड है। जब मैं कहता हूं कि हम चौथे स्तंभ हैं, तो हमें यह देखना होता है कि जो पांचवा स्तंभ है वो तब तक आपको टॉलरेट करेगा जब तक आप उनकी चिंता कर रहे हैं। पांचवा स्तंभ क्या है? पब्लिक, दर्शक, श्रोता, पाठक। अगर आप उससे कटेंगे तो शायद मुझे लगता है कि चौथे स्टेट का जो तमगा है वो भी छिन जाएगा। इन तमाम चीजों के बावजूद मुझे इस बात का संतोष है कि हम संवैधानिक पार्ट नहीं होने के बावजूद हम लोग हम पे भरोसा करते हैं। इसके बावजूद कि संविधान में आर्टिकल 19(1)(a) जिसके तहत हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार है, 70 साल बाद भी इंडियन पार्लियामेंट ने मीडिया फ्रीडम को लेकर के अमेरिका के तर्ज पे कोई कानून अलग से मीडिया के लिए नहीं बनाया। वो 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात तो करता है, लेकिन मीडिया के नाम से अलग से कोई कानून नहीं है संविधान में, जैसा अमेरिका में फर्स्ट कानून था मीडिया को लेकर के, फर्स्ट एक्ट बोलते हैं उसको। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ब्रह्मा कुमारी के लिए यह जरूरी है कि वो अपने संगठन का और विस्तार करे, अपने कार्यक्रमों को दूर दूर तक फैलाए, और मुझे लगता है कि भारतीय समाज आपको वाच कर रहा है और आपको समझ रहा है, और शायद यही कारण है कि आज आप दुनिया के देशों में जाने पहचाने जा रहे हैं। इस रंगारंग कार्यक्रम में बुलाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजीव रंजन नाग जी। कल से मूल्य शिक्षा के बारे में चर्चा हो रही है, जिक्र हो रही है। वैसे इस संस्था के साथ जो एक विंग और विंग है तो वो है एजुकेशन विंग। एजुकेशन विंग के अंतर्गत हमने करीब 11 यूनिवर्सिटीज के साथ MOU साइन किया है वैल्यू एजुकेशन के लिए। इन यूनिवर्सिटीज में हम वैल्यू एजुकेशन के अलग अलग डिप्लोमा या डिग्री हम लॉन्च किए हुए हैं, तो ताकि क्योंकि हर एक के मन में ये है कि अगर स्टूडेंट्स या यंगस्टर्स अगर बदल जाते हैं तो संसार को बदलना बहुत कठिन नहीं होता। तो बचपन से ही लेकर के अगर वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू सिस्टम बच्चों के अंदर एक डाला जाए, मन में डाला जाए, तो आगे चल करके बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटीज डेवलप हो सकते हैं, जिसके कारण से हमने ये कार्यक्रम लागू किए हैं और एजुकेशन विंग के अंतर्गत इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी बहुत सुंदर प्रस्तुति लेके आ रहे हैं श्री नागम भरतनाट्य तिरची एंड प्रेमालय नाट्य निकेतन चेन्नई से। बहुत सुंदर प्रस्तुति लेके आ रहे हैं खिली धरती खिली आसमान, इस गीत के ऊपर प्रस्तुति देने जा रहे हैं। बहुत सुंदर। सचमुच ये धरती और आसमान खिल उठी आपके इस सुंदर प्रस्तुति से, सबके दिल खिल उठा। अभी मैं निवेदन करने जा रही हूँ हॉनरेबल श्री महादेव जंकार जी, जो हमारे बीच में उपस्थित है, और आप एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी डेवलपमेंट एंड फिशरी डेवलपमेंट के आप मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। मोस्ट रेस्पेक्टेड श्री महादेव जंकार जी।
प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 80वां सालगिरह मनाने के लिए आज यहाँ के इंस्पायरेशन राजयोगी दीदी जानकी जी, राजयोगी दीदी हृदय मोहन जी, वैसा राजयोगी बी के मोहन सिंगल भाई और ललित कुमार जी, राजू राजन नाग, अनिल राय, एम एच गिजलानी, राजू निशाना, बी के वेद गिलानी और वर्ल्ड के आए हुए इंटेलेक्चुअल क्लास के सभी मेरे भाई और बहनों, मैं ये आज का दिन मेरे लिए शुभ दिन समझना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आने का मौका यहाँ मिला और यहाँ की गरिमा सोचने समझने की कोशिश मुझे मिलने की, तो मुझे सासवड़ की नीलिमा दीदी से आने का भाग्य मिला, उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब इंडिया के जो मिनिस्टर है और एमएलए और एमपी है, सब लोगों को यहाँ ट्रेनिंग लिया जाएगा तो इंडिया एक दिन के अंदर अच्छा बन जाएगा, क्योंकि मैं मिनिस्टर हूँ, सब लोगों के ख्याल में रहता है कि मिनिस्टर के बारे में नफरत आती है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट भी आए डिफेंस के, सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि शांति के लिए रिलीजियस और साइंस एक जगह लाने की कोशिश ये विश्वविद्यापीठ ने किया है, तो हमारे फार्मर लोगों को भी ये ट्रेनिंग दिया जाएगा और लॉ मेकर और लॉ इम्प्लीमेंटर को भी ये ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो इंडिया वर्ल्ड में एक नंबर आने की कोशिश बन जाएगा। साथियों, सोलर एनर्जी के बारे में इस देश में चर्चा नहीं थी तब तक यही यूनिवर्सिटी ने ये प्रोजेक्ट लगाया था, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं सोलार के बारे में, लेकिन 30 साल पहले आपने जर्मन से ये ब्रह्म कुमारी ने टाइप करने के बाद अभी सोलार का वैल्यूएशन हमें समझ में आया है। पोल्यूशन फ्री एनर्जी हमें मिल रही है, ये मैं कहना चाहता हूं कि दीदी जी, आप लोग तो ओम शांति के लिए कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास डिपार्टमेंट जानवरों का है, गाय भैंसों का मेरे पास डिपार्टमेंट है, दूध का भी मेरे पास डिपार्टमेंट है, तो आप जानो आदमी को ठिकाने करने के लिए ये इंस्टीट्यूट बनाई है, इसके साथ साथ हमें एनिमल के लिए भी आप मेंटल केयर निकल जाएगा तो हमें अच्छा और अच्छा हो जाएगा, ताकि यहाँ का एनिमल और आदमी भी समझ के आएगा और इस देश एक नंबर पे वर्ल्ड में आने की कोशिश बन जाएगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आज मैं एक दिन आया हूँ, लेकिन मुझे वक्त मिलने के बाद मैं पूरा कोर्स करने के लिए यहाँ शांतिवन आ जाऊंगा, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपको मुझे बोलने का वक्त दिया, सम्मान दिया, इसके साथ मैं आपकी रजा लेना चाहता हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महादेव जंकार जी। अभी मैं निवेदन करने जा रही हूँ मोस्ट रेस्पेक्टेड प्रोफेसर राधा माधव दास जी, हु इज द वाइस चांसलर ऑफ श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी। आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम के प्रति आप अपना ग्रीटिंग्स सभी के समक्ष दें।
ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति ही।
प्रजापिता ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 80 साल के पूर्ति की अवसर में आज द्वितीय दिवस के अपराह्न में इस सत्र में मंचोपरी उपस्थित सब महानुभाव यहां अनुपस्थित इस परिसर के जो प्रेरणा के स्रोत है, जिसके निर्देशन में ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, राजयोगिनी पूज्या दादी जी, दादी सारे दादी जियों को मेरा प्रणाम। सम्मुख उपस्थित समस्त भाई बहनों को मेरा प्रणाम। इस संस्था के साथ मेरा नाता सिर्फ 3-4 महीने पहले से शुरू हुआ। पुरी में श्री जगन्नाथ धाम के पावन भूमि पर जो ब्रह्म कुमारी का आश्रम है, वहां के जो मुखिया है, उनके साथ में संपर्क में आया। उन्होंने मुझे एक बार आश्रम से बुलाया, वहां मुझे सारे कार्यक्रम के बारे में पता चला। मुझे उत्सुकता हुई कि मैं भी इस अवसर पर यहाँ शामिल हूँ, इसीलिए शामिल हो चुका हूँ, इसीलिए मैं अपने को गौरवान्वित समझता हूँ। कई सारे चीजें मैं एक संस्कृत विषय का छात्र हूँ, आजीवन छात्र था, आज अध्यापक था, अभी कुछ प्रशासनिक दायित्व निर्वाह कर रहा हूं। तो राज्यों के बारे में हमारे शास्त्र में बहुत सारे चीजें लिखे गए हैं, शास्त्र में बहुत सारे चीजें कहे गए हैं, और उसका कार्यान्वयन, इसका उपयोग कैसे होता है, ये बड़ा गंभीर बात है। मगर यहाँ इतना सरल और सहज स्वाभाविक रूप से इसका सैद्धांतिक पक्ष को हम समझते हैं, उसका उपयोग करते हैं, ये जानकर मुझे बड़ा आनंद लगा। यहाँ का जो परिवेश है, ये परिवेश से मुझे बहुत सारा सारी बातें सीखने को मिला। ये जो मंत्र है ओम शांति ही, इसका मूल यजुर्वेद में मिलता है, बाद में सारे उपनिषद में भी यही वाणी है। वहां पूरा मंत्र ऐसा था यजुर्वेद में, ओम द्यौ शांति रंतरिक्षं शांति ही, पृथ्वी शांति, रापह शांति, रोषधय शांति ही, विश्व देवाह शांति ही, ब्रह्म शांति ही, सर्वं शांति ही, शांतिरेव शांति ही, सा मा शांतिरेधि। ये था पूरा मंत्र। इस मंत्र का हर पाद में सारा विश्व ब्रह्मांड का जो शांत वातावरण वापस आए, ऐसे बनाए रहे, इसकी कामना थी। आप देखिए यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस सारे काम में जुटे हैं, प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से भी। देव शांति का मतलब क्या होता है, आज का जो विषय है, इसमें विविध दिशाओं के साथ राजयुग का क्या संबंध है, इसके बारे में भी चर्चा शुरू हुई। देव शांति का मतलब क्या है, देवसंध्या का मतलब होता है जो देवलोक है, जहाँ सूर्य चंद्र प्रकाश द्युतिमान ग्रह नक्षत्र आदि भ्रमण करते हैं, सेलेस्टियल रीजन, वो शांत रहे। आज की वस्तु स्थिति क्या है, विज्ञान की कितने सारे परीक्षाएं, रॉकेट उत्क्षेपण होता है और सारे परीक्षा निरीक्षा वहीं चलता है, तो ये बिगड़ जाता है। तो बहुत पहले इस देश के पूर्वज ऋषियों ने अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा ये प्रार्थना की थी, ये आशा व्यक्त की थी कि हमारे देवलोक शांत रहे, पृथ्वी शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्षम शांति, जो इथेरियल रीजन है बीच का जो है वो भी शांत रहे, जहां हवा चलता है। अगर ये शांत नहीं रहेगा तो हमें अच्छा हवा कहां से मिलेगा। आज की समस्या तो यही है, पृथ्वी शांति, पृथ्वी आज अशांत है। आप सब लोगों को पता है, आप सब महानुभाव हैं, कैसे कैसे पृथ्वी अभी अशांत है। आपह शांति, आज जल का जो स्रोत है वो सारे पॉल्यूटेड है, सारी नदियां भारतवर्ष में दूषित प्रदूषित है, जो जल हम लेते हैं पता नहीं क्या पीते हैं, ये सारे अपवित्र हो गया, मतलब प्रदूषित हो गए। वनस्पतयः शांति, औषधयः शांति, औषधि का मतलब है जो वेजिटेबल वर्ल्ड, पता नहीं हम आज क्या खा रहे हैं वेजिटेबल के नाम पर, वो ठीक ठाक नहीं है, जैसे पेस्टिसाइड कीटनाशक का जो प्रयोग होता है उससे कितना द्रव्य गुण हम ग्रहण करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, ये संदेहास्पद है, ये अशांत है। वनस्पतयः शांति, जो वनस्पति है, सारी वृक्ष, जो पूरा एनवायरमेंट है वो भी आज कट चुका है बहुत सारा, वो भी अशांत है। वनस्पतयः शांति, ब्रह्म शांति, द होल कॉस्मिक यूनिवर्स इज मैनिफेस्टेशन ऑफ ओम, वो अशांत है, वो भी शांत रहे। देवाः, देवाः शांति नाम विश्व देवाः शांति, जितने सारे दिव्य धाम में जितने सारे देव देवताएं हैं, अगर ये शांत न रहे तो क्या उत्पात मचेगा, ये भी चिंता का विषय है। ब्रह्म शांति, विश्व देवाः शांति, शांति रेव शांति नाम, इस विश्व ब्रह्मांड में केवल शांति ही विराजमान करे, सा मां शांति रेधी, वही शांति मेरे अंदर वृद्धि लाभ करे, ये था वाक्य। तो आप देखिए इतने सारे शांति के लिए जो प्रार्थना है हमारे पूर्वज ऋषि ने की थी, आज ब्रह्म कुमारियों का ये कार्यक्रम के माध्यम में मेरे ख्याल में बहुत सारे कार्यक्रम जुड़े हुए हैं, ये एक बड़ी बात है। ये ऊर्जा का विकल्प सोचते हैं, इसका मतलब है सोलार एनर्जी की, सोलार एनर्जी अगर हम प्रयोग करें, व्यवहार करें, तो कोयला और डीजल वगैरह वगैरह ये सारे सुरक्षित रहेंगे, इससे प्रदूषण नहीं बनेगा, इस दिशा में काम कर रहे हैं। और बाकी सारे बहुत सारे चीजें इसमें शामिल है। सबसे बड़ी बात है कि जो भाई संबोधन मुझे अच्छा लगता है, भाई संबोधन से मुझे साम्यवाद का कोई संदेश आता है मुझे। यहाँ जैसे कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, अपने नाम रूप और उपाधि ये सारे केवल दिखावा है, अपना आत्मा जो अंदर है वही सही है। ऐसे करके बहुत सारे चीजें उदाहरण रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है जो शिक्षणीय है। मुझे मेरा समय खत्म हुआ, ऐसा निर्देश आ गया, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आयोजकों से। ये पहली बार इसके बारे में मुझे कुछ पता चला, ज्यादा जानकारी मेरे पास नहीं है, मैं कोशिश करूंगा इस दिशा में आप लोगों के जो कार्यक्रम है, आपके जो दर्शन है और सारे चीजें हैं, इसके बारे में मैं जरूर पढ़ूंगा और अपने आप को अपडेटेड बनाऊंगा। मैं अपनी आभार प्रकट कर रहा हूं आयोजकों से जिन्होंने मुझे ऐसे कुछ अपना भाव विनिमय करने के लिए यहां आदेश दिया। आप लोगों को सबको मेरा धन्यवाद नमस्कार, जो आपने मुझे श्रद्धा के साथ सुना, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद मोस्ट रेस्पेक्टेड प्रोफेसर राधा माधव दास जी, बहुत सुंदर आपने कहा शांति के बारे में। ब्रह्म कुमारीज का भी यही मंत्र है, ओम शांति। जब भी हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं तो ओम शांति कह करके हम ग्रीट करते हैं। ओम शांति का मतलब है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब आत्मा शांति का अनुभव कर लेती है तो संसार में शांति हम ऑटोमेटिकली ला सकते हैं। अभी मैं निवेदन करने जा रही हूँ, आदरणीय डॉक्टर M.H. गजा जी, हु इज द एडिटर ऑफ यूनाइटेड न्यूज नेटवर्क, आपसे निवेदन है कि अपना ग्रीटिंग्स हमारे समक्ष रखें। अभी मंच पर उपस्थित सभी मेहमानों का अभिनंदन और अभिवादन चल रहा है। हमारे बीच उपस्थित है हॉनरेबल श्री कलराज मिश्रा जी, हु इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस न्यू दिल्ली। अभी मैं निवेदन कर रही हूँ डॉक्टर M.H. गजाल जी, हु इज द एडिटर ऑफ यूनाइटेड नेशंस न्यूज नेटवर्क, आपसे निवेदन है कि आपके दिल के उद्गार हमारे समक्ष रखें।
आदरणीय दादी जानकी जी, इंदिरा मोहिनी जी, मंच पर विराजमान 30 या डिवाइन आत्माएं, सामने शांति की शांति दूत, भाइयों और बहनों, मेरा ये पहला अवसर है आपके बीच उपस्थित होने का। इससे पहले भाई सुशांत जी ने मुझे दिल्ली में आमंत्रित किया था और पहली बार मुझे ब्रह्मा कुमारी के बारे में जानने का अवसर मिला। मैं ये जानकर इंतहाई खुश हुआ और अपने आप को इस बात के लिए फख्र महसूस करता हूं कि आपने मुझे यहां आने का अवसर दिया, दो शब्द कहने का मौका दिया। मैं आपके सामने दो तीन बातें बहुत ही मुख्तसर में रखना चाहता हूं। पहली चीज ये कि दुनिया की तारीख में, दुनिया के इतिहास में दो ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने पूरी दुनिया को न सिर्फ उथल पुथल मचा दी बल्कि हमारा देश आज तक उससे परेशान है। और वो दो घटनाएं थी दो व्यक्तियों के अपने व्यक्तित्व को प्रूव करने की घटनाएं, उनमें एक था जिन्ना और एक था हिटलर। आप सब वाकिफ हैं कि उन्होंने इस दुनिया में क्या उत्पात मचाया। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि शायद दादा के मन पर इस बात का बहुत असर हुआ होगा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी अना के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए इतनी बड़ी घटनाएं दुनिया में पैदा कर सकता है तो कितना घातक हो सकता है इंसानियत के लिए। और शायद इसीलिए दादा ने जो मिशन शुरू किया शांति का, वो मिशन अपने आप में न सिर्फ इम्पोर्टेंट है, न सिर्फ अहम है, बल्कि इंसानी जीवन के लिए उसके बगैर कोई मूल्य नहीं है। अगर इंसानी जीवन का मूल्य है तो वो शांति के बगैर परिपूर्ण नहीं होता, मुकम्मल नहीं हो सकता। मैं आप हजरात से, आप भाइयों बहनों से ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अनुयायियों से कहा था कि एक सिमत ऐसी है, एक कोना ऐसा है इस दुनिया का जहां से मुझे ठंडी हवाओं का आभास होता है, और वो कोना हिंदुस्तान है। इसकी तरफ आपने इशारा किया। भाइयों बहनों, मैं ये देख रहा हूं यहां की महफिल को देखकर, यहां के भाई बहनों की सेवा भाव और उनकी निष्काम सेवा को देखकर कि यकीनन अल्लाह के रसूल की नजर आपके काम पर रही होगी, वरना एक नबी अपने वक्त का ये बात नहीं कह सकता था। और देखिए, मैं एक बात और आपसे कहता हूं पूरी जिम्मेदारी से कि सिवाय भारत के दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जो पूरी दुनिया का विश्व गुरु बन सके, सिवाय भारत के, क्योंकि हमारे पास सोल आत्माएं हैं, हमारे पास शांति का पैगाम है, हमारे पास इंसानियत है, हमने प्रूव किया है। और इसको प्रूव करने की, कहने से नहीं होता, प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती जब मैं अपनी बहनों के चेहरे खिले हुए देखता हूं, जब मैं यहां काम करने वाले लोगों के चेहरों पर एक अजीब सा तेज देखता हूं, जब उनके चेहरे पर मैं एक उम्मीद की किरण देखता हूं, तो मैं अंदर से गदगद हो जाता हूं कि ये लोग हैं जो इस देश का भला कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, मैं एक बात उसमें और जोड़ना चाहता हूं। यहां कल राज मिश्र जी माननीय हमारे मौजूद हैं, उनके माध्यम से भी ये बात मैं कहना चाहूंगा कि जो काम आपने किया है, इस काम को आप उन क्षेत्रों में ले जाने की कोशिश कीजिए जो बहुत दूर दराज हैं। हजारों लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि उनके खाने में न्यूट्रिशन नहीं है। वो खाना खा लेते हैं लेकिन उसकी वजह से उनमें बीमारियां पैदा हो रही हैं। वो आपके साथ जुड़ने को तैयार हैं। हजारों लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जिनको एक वक्त खाना नहीं मिल रहा है। अगर आप उनकी थोड़ी सी रहनुमाई कर दें, थोड़ी सी गाइडेंस दे दें, तो इस देश का भला हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। मैं ये बात और कहना चाहता हूं कि ब्रह्मा कुमारी ने इतने बड़े बड़े काम किए। मैं सुबह से आज उनके सारे प्रोजेक्ट देखकर आया हूं, सारे काम देखकर आया हूं, और पूरी गहराई में जाकर देखा है, तसल्ली से देखा है और समझा है। एक जर्नलिस्ट की आदत होती है कि अच्छाई में कमी ढूंढना, लेकिन मैं कोई कमी नहीं ढूंढ पाया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप शिक्षा के साथ, प्राइमरी एजुकेशन के साथ आध्यात्मिकता को जोड़ दें, इस रिलीजियस एजुकेशन को जोड़ दें, तो शायद हमारे देश में जो इख्तलाफात हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, बहुत अच्छा माहौल पैदा हो जाएगा और हम सब भाई भाई हो जाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर हिमेश गजाली जी। हमारे समक्ष जो भी मेहमान हैं उनका सम्मान करने आ रहे हैं आदरणीय मृत्युंजय भाई जी। मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय वेद गुलियानी जी से साइटेशन पढ़े।
Esteemed symbols of divinity, BK sisters and brothers on the stage, honorable dignitaries from various fields of the society, at this moment I address divine brother Rajiv Ranjan Nagji, brother Anil Rayji in absentia, brother Dr. M.H. Ghazali ji, brother Rajiv Nishana ji. I, on behalf of the Brahma Kumaris, take this opportunity to say that we greatly appreciate you for your sincere and dedicated media services in promoting the true spirit of journalism. We sincerely acknowledge your significant roles in informing, educating, and enlightening the masses about the various affairs of the world. We also felicitate you for your pragmatic contributions you have made for the welfare, development and progress of the society and country as a whole and the world at large, which are quite relevant and will go a long way in shaping the society and making the world a better place to live. Your useful works and activities as in the world of media, which has been acclaimed as the fourth pillar of democracy, have been quite commendable, memorable, and worthy of respect and reverence. Let incorporeal Godfather, Supreme Soul Shiva, angelic Pitashri Brahma Baba, the corporeal founder of the Brahma Kumaris movement, and the divine family of Brahma Kumaris shower their blessings upon you for your long, healthy, happy and blissful life. Once again, I heartily congratulate you on this felicitation on this divine campus of the Brahma Kumaris. Om Shanti. Thank you.
शहीद फरीदी जी से भी निवेदन है कि मंच पर आए। शहीद फरीदी जी, अभी मैं निवेदन करने जा रही हूँ आदरणीय चक्रधारी दीदी से। चक्रधारी दीदी पिछले 55 इयर्स से संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। बाल्यकाल से ही आप राज्योग का अभ्यास कर रहे हैं और वर्तमान समय आप दिल्ली के शक्ति नगर और शक्ति नगर के संबंधित जो भी कनेक्टेड जो भी सेवा केंद्र है आप उसके संचालक हैं और उसके साथ साथ रशिया में जो भी सेंटर्स है हमारे रशिया सीआईएस और बाल्टिक कंट्रीज में आप उनका भी डायरेक्टर है, रीजनल कोऑर्डिनेटर है। ऐसे त्यागी तपस्वी आत्मा से मैं निवेदन करती हूँ आज के इस सभा को आप अपने ग्रीटिंग्स अपने प्रवचन दें।
शांति। सम्माननीय मंच, आदरणीय सभा, आप सबका मैं समझती हूँ अटेंशन इस स्वागत के समारोह में चल रहा होगा, फिर भी मैं आपका अटेंशन खिंचवाना चाहूंगी कि इस महान आयोजन के पीछे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का तात्पर्य क्या है। क्योंकि जहां भी मनुष्य आता है उन्होंने हमको किस लक्ष्य के लिए बुलाया है, केवल स्वयं की सराहना सुनने के लिए नहीं या अपने विचार आप पर थोपने के लिए नहीं, लेकिन सत्यता को जानने के लिए आप सबको यहाँ आमंत्रित किया गया है। और मैं आपको इस सत्यता से बोध कराना चाहती हूँ कि ये निमंत्रण किसी एक व्यक्ति के द्वारा आप सबको नहीं दिया गया या किसी प्राणी मात्र का ये निमंत्रण नहीं है जो आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये निमंत्रण आप सबको आपके पिता परम पिता परमात्मा का निमंत्रण है, जिसे शायद मेरे शब्दों से आप ना भी समझ पाओ, लेकिन मैं आप तक इस सत्यता को पहुंचाना अवश्य चाहूंगी। आज हम सबको विदित है कि पूरे विश्व में कोई भी ऐसा विश्व का कोना नहीं छूटा जहां अशांति दुख और परेशानी ना हो। प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी चिंता से या किसी ना किसी चिंतन में अवश्य परेशान रहता है। बड़ा स्पष्ट होता है कि विज्ञान ने हम सब के सन्मुख जीवन में सुख के साधन अवश्य दिए हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी सामग्री नहीं जो आज मानव के पास उपलब्ध ना हो, लेकिन सब साधनों के बावजूद भी जो मनुष्य जीवन में चाहता है वे उसकी चाहना है जीवन की स्थायी सुख और शांति का जीवन यापन करना। आज किसी एक से भी पूछा जाए कि क्या आप अपने जीवन में स्थायी सुख और स्थायी शांति का अनुभव कर रहे हैं, मैं नहीं समझती कोई ये कहे कि हम सदा काल के लिए अविनाशी सुख और अविनाशी शांति की अनुभूति में रहते हैं। और इस प्रकार की इच्छा, शांति सुख आनंद प्रेम शक्ति की इच्छा किसी प्राणी की कोई प्राणी पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि ये भौतिक जगत है। भौतिक जगत में जो भी प्राप्तियां प्राप्त होंगी वे नश्वर होंगी, वह नश्वर नहीं हो सकती है। और मनुष्य कभी भी नश्वर चीजों से संतुष्ट नहीं रह सकता। अगर आज संतुष्ट है तो कल वो पुनः असंतुष्ट हो जाएगा। इसलिए इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का ये संदेश देते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि परम पिता परमात्मा जो विश्व की सर्व आत्माओं के परम पिता हैं, जो सुख शांति आनंद प्रेम के सागर हैं, उनका ये कहना है कि ये पवित्रता, सुख शांति आनंद और शक्ति अभी जरा दादी जी से आप अवश्य मिलना चाहेंगे, मिल लीजिए। बात को कंटिन्यू करना चाहूंगी। आदरणीय दादी जी की उपस्थिति में मैं यही बताना चाह रही थी कि आज प्रत्येक मनुष्य को जीवन में शांति, अविनाशी सुख और अविनाशी आनंद की प्राप्ति की तमन्ना है, और ये तमन्ना उसकी कोई मानव अथवा संसारिक पदार्थ पूरी नहीं कर सकता है। जब ऐसा समय आता है तब स्वयं परम पिता परमात्मा, जो विश्व की सर्व आत्माओं के पिता हैं, वे विशेष हम आत्मा रूपी बच्चों को ब्रह्मा बाबा के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि हे मेरे बच्चे, ये पवित्रता, सुख शांति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आप केवल मात्र स्वयं को पहचान कर मुझ अपने पिता परमात्मा से अपने मन का नाता जोड़ लो। मैं बार बार सुन रही हूँ, दादा लेखराज जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, दादा लेखराज जी ने ये महान मंडली प्रारंभ की, लेकिन आज अगर दादा लेखराज जी ने हम प्यारे बाबा कहते हैं वो सुनते तो कभी प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि सदा उनका ये इशारा रहा कि दादा का आदेश नहीं है, ये दादा के भी उस पिता का आदेश है जिस पिता का आदेश वो इस तन में प्रविष्ट होकर के अपने सब बच्चों को सुना रहे हैं। और आज मैं आपको शब्द क्लियर शब्दों में कहना चाहूंगी कि ये परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप शिव बाबा, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के साकार माध्यम को आधार बनाया, ये एक छोटी सी गाथा अवश्य सुनाऊंगी कि जब प्रथम साकार बाबा हम बच्चों को अपना निजी अनुभव सुनाया करते थे कि एक बार गुरु की सभा में बैठा था और अचानक बैठे बैठे ऐसा मन में आया कि कोई शांति खींच रही है, और बाबा अपने कमरे में चले गए, गद्दी पर बैठ गए, जबकि ऐसा कभी होता नहीं था। और प्रथम बार गुरु की सभा से उठकर एक कमरे में चले जाना तो बाबा की लौकिक पत्नी ने अपनी बहू को कहा कि देखो आज दादा अंदर जाकर शांत में क्यों बैठे हैं। वे अंदर गई, वापस नहीं आई, पत्नी भी अंदर गई और उन्होंने क्या देखा कि बाबा गद्दी पर बैठे हैं, आंखें खुली हैं और आंखें ऐसे चमक रही हैं जैसे कोई प्रकाश निकल रहा हो और सारे कमरे में प्रकाश ही प्रकाश है और शांति का वातावरण है। दोनों ने बाबा को हिलाना नहीं चाहा। कुछ समय के पश्चात बाबा के मुख से कुछ शब्द निकले, वो तीन शब्द मैं सुनाना चाहूंगी। वो पहला शब्द था निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये तीन शब्द निकलने के पश्चात बाबा की आंखें बंद हो गई और कुछ समय के पश्चात आंखें खोलकर उन्होंने चारों तरफ देखना प्रारंभ किया कि ये कौन था, ये कौन था। तब उनकी पत्नी ने उन्हें कहा कि आप ही थे, ये आपने ही बोला। तब बाबा के मुख से ये शब्द था, ये मैंने नहीं बोला, ये मैंने सुना है। ये कौन था, ये कौन था। ये वो दिन था, ये वो समय था जब स्वयं परमपिता परमात्मा उस साकार माध्यम के तन में प्रविष्ट होकर अपनी पहचान दी कि मैं ज्ञान का सागर ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा हूँ। और ये पहचान प्राप्त करते ही बाबा को इस बात का धीरे धीरे बोध होता चला गया कि ये तन केवल मात्र निमित्त है, लेकिन ज्ञान देने वाला वो ज्ञान का सागर है। हम कभी बाबा के सम्मुख बैठते थे तो बाबा कहते थे, बच्चे किसको याद कर रहे हो, इसको याद नहीं करना। आज तक मानव ने मानव से संबंध जोड़े और मानव को मानव के द्वारा जो जीवन में मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति होनी चाहिए वे प्राप्ति नहीं हो सकी। आज उस दाता का यही आदेश है कि मन को सब तरफ से हटा दो, देह सहित देखे सरल संबंधों से बुद्धि का योग निकाल कर मुझ ज्योति स्वरूप में अपने मन को जोड़ लो। मैं तुम आत्माओं का पिता, तुम्हें पवित्रता सुख शांति का जन्म सिद्ध अधिकार देने आया हूँ। ये मेरे सभी बच्चों को देश और विदेश में, देश के विश्व के कोने कोने में ये संदेश दे दो कि मैं पिता अपने बच्चों को, अपने बच्चों के दुख और अशांति को नहीं सहन कर सकता। अब मैं अपने बच्चों को सदा सुखी और सदा शांत रहने का उनका जन्म सिद्ध अधिकार देने आया हूँ। इस अधिकार की सूचना देने अर्थ हमने आज आप सबको आमंत्रित किया है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चक्रधारी दीदी जी का। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, मन मना भव, मन मेरे में लगाओ। मन से सच्चे दिल से जब परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा की शक्तियां और प्यार हमको प्राप्त हो सकता है और आत्मा सशक्त हो सकता है। अभी मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ आदरणीय लोकेश मुनि जी से कि दादी जी के प्रति अपना उद्गार प्रस्तुत करना चाहते हैं। आदरणीय लोकेश मुनि जी,
कोई नहीं, मंच के मध्य विराजित अध्यात्म साधना की शिखर पुरुष परम आदरणीय परम सम्माननीय दादी जानकी जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री भाई कलराज मिश्र जी, भाई ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के, जिन्हें मैं कह सकता हूं एक महान स्तंभ के रूप में, भाई ब्रजमोहन जी, भाई मृत्युंजय जी, हमारी समस्त ब्रह्म कुमारी बहने, उपस्थित बंधुओं और बहनों, मेरे से पूर्व दिल्ली के शक्ति नगर से आई शक्ति स्वरूपा मेरी बहन कह रही थी, दादा लेखराज जी के बारे में हमने उनको तो नहीं देखा, किंतु मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि मन की ममता जब माटी से जुड़ती है तो शैतान पैदा होता है, और मन की ममता जब तन से जुड़ती है तो इंसान पैदा होता है। ममता बंधन है तो अनमोल मुक्ति का द्वार भी, मन की ममता जब चेतना से जुड़ती है तो लेखराज जी जैसा महान पैदा होता है। बंधुओं और बहनों, मैं केवल दादी जी के प्रति भावना प्रकट करने के लिए, हमने दादा लेखराज जी को नहीं देखा, किंतु ये सौभाग्य रहा कि मैंने दादी प्रकाशमणि को देखा, दादी जानकी जी को निकट से देखा, और मैं इन दोनों का जो चयन हुआ, मैं दादा लेखराज जी को कहना चाहता हूं, परम पारखी पुरुष तुम्हारे चयनों में ये चयन निराला, परम पारखी पुरुष तुम्हारे चयनों में ये चयन निराला, दिव्य ज्योति से भरा हुआ सब नयनों में ये नयन निराला, परम पारखी पुरुष तुम्हारे चयनों में ये चयन निराला, दिव्य ज्योति से भरा हुआ सब नयनों में ये नयन निराला। दादी जी, हम सभी जानते हैं, हे कोमल नवनीत हृदय से, जब जब भी इनसे हम मिलते हैं, हे कोमल नवनीत हृदय से, पर प्रज्ञा से प्रखर बनाया, एक नहीं पहचान बनाकर सब मनकों में शिखर बनाया, गण के माला कार खिला सुबह, सुमनों में ये सुमन निराला, परम पारखी पुरुष तुम्हारे चयनों में ये चयन निराला। अंत में मैं दादी जी के प्रति कहना चाहता हूँ कि दादी, जो आप काम कर रही हो, मैंने सुबह भी कहा था, मैं यहाँ बार बार क्यों आता हूँ, इसमें मेरा अपना स्वार्थ है, आपके पास बैठने मात्र से हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, आप 100 वर्ष की उम्र में जो काम कर रही है, हमें एक नई प्रेरणा मिलती है, और आप वो काम कर रही है जिससे नए युग का निर्माण हो रहा है, जिससे समाज का नव निर्माण हो रहा है, जिससे हमारा राष्ट्र जो है, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा केवल नदियों पहाड़ों या सीमा रेखाओं से नहीं, देशवासियों के चरित्र बल पर निर्भर करती है, और उस चरित्र का निर्माण आप कर रही हैं, उन नैतिक और मानवीय मूल्यों का निर्माण कर रही हैं, और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि युग की सृजनहार तुम्हारा अभिनंदन, युग की सृजनहार तुम्हारा अभिनंदन, और मानवता की अवतार तुम्हारा अभिनंदन, एक नए युग का निर्माण, युग की सृजनहार तुम्हारा अभिनंदन, और मानवता की अवतार तुम्हारा अभिनंदन, मांगता है लोकेश ईश्वरत्व का वरदान, और आबू के द्वार तुम्हारा अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। मैं पुनः इस 80वें एनिवर्सरी के अवसर पर जैन समाज की ओर से, अहिंसा विश्व भारती की ओर से, दादी के माध्यम से इस समाज ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय परिवार का जो है, मैं अभिनंदन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम।
बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय बिशंबर नेवर जी, जो ताजा टीवी के चेयरमैन हैं और छपते छपते के चीफ एडिटर हैं। आप कलकत्ता से पधारे हुए हैं, आपसे निवेदन है कि सभा को ग्रीटिंग्स अपना दें।
ये मेरा परम सौभाग्य है कि जब मुझे बोलने के लिए कहा गया, उसके कुछ देर पहले ही परम पूज्या जानकी दादी जी यहां पधारी। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। और मैं आपको प्रणाम करता हूं और ब्रह्मा दादा जी को नमन करता हूं। इस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ी बात यह देखी मैंने कल से कि आपने पत्रकारों को बड़ी संख्या में बुलाया है। कल और आज काफी पत्रकार टीवी से जुड़े हुए, समाचार पत्र जगत से जुड़े हुए, वो आपके कार्यक्रम में आए, ये मैं पहली बार किसी कॉन्फ्रेंस में देख रहा हूं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, 80 वर्ष पहले एक छोटा सा अंकुर, एक बीज बोया था ब्रह्मा जी ने, वो बीज उसके बाद दादी जानकी जी ने उसको प्रस्फुटित किया। तो ये वही है, इसी के लिए अकबर इलाहाबादी ने शेर लिखा है, इसी स्थिति के लिए एक शेर लिखा अकबर इलाहाबादी ने कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। और अब ये आपका कारवां दुनिया के 137 मुल्कों से गुजरा है, भारत का ऐसा कोई कारवां, ऐसा कोई कोना नहीं है जहां आपका कारवां न गया हो। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपके संघर्ष को याद करता हूं, आज से 80 वर्ष पहले कल्पना करिए, आप में 80 वर्ष का तो व्यक्ति बहुत कम होंगे, लेकिन आपके पिताजी, आपके दादाजी कभी व्यापार में करने गए होंगे, किस उस वक्त कितने कम साधन थे, ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं था, मीडिया इतना उन्नत नहीं था, टीवी तो खैर था ही नहीं, ऐसे वक्त एक जगह से दूसरी जगह जाने में जंगल पार करना पड़ता था, उस वक्त किस तरह विकट परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में उन लोगों ने इस संगठन की स्थापना की और इस संगठन को आगे बढ़ाया, ये अपने आप में एक स्मॉल वंडर कह सकते हैं, दुनिया का एक छोटा आश्चर्य है ये। लेकिन किया है आपके सामने आज इतना बड़ा, एक छोटा सा अंकुर इतना बड़ा बरगद का पेड़ बन गया, ये आपके सामने है। आज जो हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं, मुख्य रूप से वर्ल्ड ट्रांसमिशन के लिए इकट्ठे हुए हैं, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया को बदलने के लिए। पहले हम ये समझ लें आज की दुनिया क्या है। आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है, आपके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल है, आप अभी बैठे बैठे अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, दुनिया के किसी कोने में बात कर सकते हैं। किसी ने कहा था दुनिया मुट्ठी में, आप एक दिन में पूरी दुनिया सैर करके आ सकते हैं, विज्ञान परम चरम पर है। लेकिन साथ ही साथ ये जितना सत्य है, उतना सत्य ये भी है कि हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। हमको ये नहीं पता है कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे पड़ोस में क्या घटना घट रही है हमें नहीं मालूम। आज से कुछ वर्ष पहले बंबई में एक गायिका फ्लैट में रहती थी, और बहुत दिन बाद में पता लगा लोगों को उसके बगल के फ्लैट के कि वो मर चुकी है, उसको मरे भी कई वर्ष हो गए। ये हमारी आज की दुनिया है कि जब हम दुनिया की हर चीज जानते हैं, हम टेलीविजन में वर्ल्ड की सब चीजें देखते हैं, कम्युनिकेशन के साधन बहुत उन्नत हैं, लेकिन हमारे बीच में क्या हो रहा है, हमारे बगल में क्या हो रहा है, हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, इसकी हमको जानकारी नहीं, इसका हमको पता नहीं है। ऐसी स्थिति में इस दुनिया को आप कैसे बदलेंगे? दुनिया को बदलने के लिए मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, हमारा देश जो है वो मूलतः आध्यात्मिक देश है, धार्मिक देश नहीं है। धर्म तो कई धर्म चले, कई उपधर्म चले, कई प्रचलन हुआ, लेकिन हमारा देश जिस विश्व गुरु की हमारे पूर्व वक्ता ने बात की, वो विश्व गुरु बना, हमारे देश आध्यात्म देश था। दुनिया को उसने बताया, जब अमेरिका, लंदन वगैरह में लोग जंगलों में घूमते थे, उस वक्त सभ्यता हमारे आई थी, दुनिया में सभ्यता का प्रकाश सबसे पहले हमारे यहां फैला था, हमने दुनिया को सभ्य किया। लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है, आज जरा कल्पना करिए, जिस विश्व शांति की हम बात करते हैं, अभी हमारे एक पत्रकार बंधु बता रहे थे, आज दुनिया में भुखमरी है, आज दुनिया में अभाव है, आज दुनिया में शोषण है। सोचिए कभी इस भुखमरी, इस अभाव, इस शोषण के रहते हुए क्या यह संभव है कि हम विश्व शांति कर सकें? असंभव। इसलिए अध्यात्म और विज्ञान को मिलाया जाता है। आपका जो शब्द ओम शांति, मैं इसमें देखता हूं कि ओम का मतलब हुआ अध्यात्म, और शांति का मैं समझता हूं मतलब विज्ञान से हुआ, क्योंकि वैज्ञानिक प्रगति जब तक नहीं होगी तब तक हम इन सारी समस्याओं से उबरेंगे नहीं, और हम कितने ही समस्या विज्ञान को कर लें, जब तक आध्यात्मिक शक्ति हमारे में पैदा नहीं होगी तब तक उन सारी समस्याओं का हम समाधान नहीं कर सकते। इसलिए ये एक बहुत बड़ा चुनौती है हमारे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के जितने हमारे भाई बंधु हैं, हमारी दादी जी ने और हमारे ब्रह्मा जी ने जो सबसे बड़ा काम किया, मैं समझता हूं पत्रकार का काम होता है खोजी पत्रकारिता, उसको खोजना, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, उसके लिए एक दो लाइन की छोटी सी कविता मेरे पास में, अपना क्या था इस दुनिया में सब कुछ लिया उधार, अपना क्या था इस दुनिया में सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा इन लोगों का अपनी केवल धार। ये पत्रकार होता है। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा जो काम किया दादाजी ने और जानकी देवी जी ने, जानकी दादी ने, वो मनुष्य में परमात्मा का दर्शन किया। अगर मनुष्य में परमात्मा का तत्व तो नहीं होता तो आज इतने हजारों की संख्या में लोग यहां पर आकर के यहां एकत्र हुए हैं और बिना किसी शासन के, बिना किसी प्रशासन के, बिना किसी आईएएस ऑफिसर के, बिना पुलिस के, बिना मिलिट्री के, तीन दिन से आराम से हम लोग बैठे हुए हैं, सब कुछ चल रहा है। ये तब तक नहीं होता जब तक कि व्यक्ति में परमात्मा का तत्व नहीं होता। और इसी परिवर्तन के लिए, इसीलिए हम कहते हैं मनुष्य परिवर्तन करेगा, और मनुष्य में वो ताकत आपने दी है। ये वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। आजादी जो 80 वर्ष पहले जब हमारे यहां महिलाओं का दहलीज से बाहर निकलना वर्जित था, महिलाएं बाहर निकलती नहीं थी, उस वक्त दादी जी ने इतना बड़ा काम किया। महिलाओं में शिक्षा नहीं थी, शिक्षा से वंचित रखा जाता था महिलाओं को, कहते थे कि महिला अगर लड़की पढ़ लिख लेगी तो बर्बाद हो जाएगी, चरित्रहीन हो जाएगी। 80 वर्ष पहले यह युग था, उस वक्त इस महिला ने, हमारी दादी जी ने इतना बड़ा काम किया। ये वास्तव में इतिहास जब भी होगा, इतिहास जब लिखा जाएगा तब इसका आकलन होगा, अभी इसका आकलन नहीं हो सकता। मैं आपसे ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूं ये जो ऊर्जा की बात हम करते हैं, शक्ति की बात करते हैं, ये आग की बात करते हैं, एक छोटी सी कविता सुना करके, कवि दुष्यंत अमर कवि, युवा कवि दुष्यंत की मैं चार लाइनें सुना करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। और वो कविता यह है, पीर पर्वत बन चुकी है, पीर पर्वत बन चुकी है, अब पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। पीर पर्वत बन चुकी है, अब पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, वो आग जलनी चाहिए। जय हिंद, नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद नेवर जी का। जिस बात की जिक्र बार बार हो रही है, ऊर्जा की, योग की, शक्तियों की, चलिए चंद क्षणों के लिए उसका अनुभव हम सभी करें। बहुत कुछ सुना, सुबह से भी सुन रहे हैं, अभी भी हम सुन रहे हैं। अभी मैं निवेदन करने जा रही हूँ आदरणीय सुषमा दीदी जी को कि हम सभी को इस दुनिया से पार, परमात्मा के पास हम सभी को ले जाए और उस ऊर्जा की अनुभूति हम सभी को कराए, राज्यों का अभ्यास हम सभी को कराए। साथ साथ 21 बहनों बहने आस पास यहाँ बैठेंगी और योग में, तो आप सभी भी उस ऊर्जा का भी आप अनुभव कर सकते हैं। आदरणीय सुषमा दीदी जी पिछले 60 साल से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। जब आप 5 साल के थे, बहुत छोटे आयु के थे, तब से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं, और पिछले 46 इयर्स से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय जयपुर और जयपुर के संबंध कनेक्शन में जो भी अपने सेवा केंद्र है उसका संचालन आप कर रहे हैं। आदरणीय सुषमा दीदी जी,
ओम शांति। शांति। सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों के भंडार, सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु शिव बाबा की प्रिय संताने, मंच पर उपस्थित प्रेरणा स्रोत, अनुभवी जन और सभागार में उपस्थित हमारे सब प्रिय भाई एवं बहने, दो दिन से एक बात जो मैं देख रही हूं, गीता के महावाक्य याद आते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य क्या करता है, आश्चर्यवत होकर सुनता है, देखता है। शायद यही स्थिति आज हम सब की है, हर कोई हैरान है, कौन यहां मैनेजर है, कौन आईएएस ऑफिसर है। चक्रधारी दीदी ने सत्यता का परिचय दिया, उसी को मैं आगे बढ़ाती हूं। कई लोग पूछते हैं, आप ब्रह्मा कुमारियां क्या करती हैं, क्या कहना चाहती हैं। मैं पहले एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं। कहते हैं कि एक बार चाबी और हथौड़े में आपस में जिरह हो गई, बहस हो गई। हथौड़े ने चाबी से पूछा, तुम और हम एक ही जाति के हैं, लेकिन क्या कारण है अगर ताला बंद हो जाए, मैं ताले पर वार पर वार, वार पर वार करता हूं, पर ताला खुलता नहीं, टूट जाता है, और तुम मेरी ही जाति की मेरी बहन, छोटी सी चाबी और ताले को खोल देती हो। तो चाबी ने कहा, हथौड़े भैया, तुम वार पर वार बाहर से ही करते रहते हो, लेकिन मैं ताले के अंदर घुसती हूं और उसको अंदर से घुमा देती हूं और ताला खुल जाता है। ब्रह्मा कुमारी बहनों के पास ताला खोलने की जो चाबी है, जो रहस्य है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। यूं तो ये इतना बड़ा विज्ञान है, इतना बड़ा विद्यालय का अनुभव है, शायद कुछ सेकंड्स में नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी यहां जो मुख्य चीजें सिखाई गई हैं, उसमें है सहज राज योग की शिक्षा। तो बहुत बार जब हम योग शब्द सुनते हैं तो लोग छटपट आने लगते हैं कि शायद एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन यही हमें चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन तो अपने आप हो जाता है, जरा आप अपने को देखिए, इस समय एकाग्रचित होकर नहीं आप सुन रहे। जब मनुष्य मन को अच्छी चीज मिलती है, प्राप्ति होती है, वहां मन एकाग्र हो जाता है। राज योग की शिक्षा केवल मन की एकाग्रता नहीं, लेकिन राजयोग की शिक्षा एक लाइफस्टाइल है, हमारा जीवन कैसे हो, अवेकनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, मन की ज्योति को जागृत करना, इसको ही राजयोग कहते हैं। उसका आधार है शुद्ध संकल्प, शुद्ध चिंतन, दूसरा सबके लिए शुभ भावना, तीसरा हर घड़ी सबके लिए प्योर पवित्र वाइब्रेशन दान करना। आप सोचेंगे हम कैसे करें, आप सब आए हैं, मैं चाहती हूं आप सब भी ये अकाउंट खोल के जाइए। खोलना चाहेंगे अकाउंट, शुभ भावनाओं का अकाउंट खोलना चाहेंगे, हाथ उठाइए। तो ये शुभ भावना का अकाउंट बहुत आसान है। मेरे साथ मंच पर दोनों तरफ हमारी बहनें भी बैठी हैं। अब हम चलेंगे अपने अंतर जगत की उस यात्रा की ओर, जिससे हम अपने अंदर शुभ भावनाएं पैदा करके अपने चिंतन को, अपनी स्मृति कॉन्शियसनेस को, अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बना सकते हैं, तभी हमारे अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ये राजयोग की शिक्षा एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। ग्रीन रेवोल्यूशन देखा, व्हाइट रेवोल्यूशन देखा, स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन का रेवोल्यूशन ज्ञान और योग के द्वारा हो रहा है। तो चलो चले अपने अंतर जगत की यात्रा की ओर। केवल एक छोटी सी सुजेशन देना चाहूंगी। आप सब बैठे जैसे आप इजी फील करते हैं, लेकिन थोड़ा अलर्ट होकर बैठे। दूसरा, नेत्र खुले रखें। आपके सामने बहने भी बैठी हैं और सबसे महान शक्ति, विश्व की महान शक्ति, हमारी आदरणीय दादी दादी जानकी जी बैठी हैं। नेत्र खोल कर बैठने से सहज ही, जिसको हम कहते हैं शक्तिपात, शक्ति तब मिलती है जब हम एक रूप हो जाते हैं। तो चलो अपने मन में ये शुद्ध विचार लाएं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मस्तक के बीचों बीच विराजमान हूं। आत्मा का स्वधर्म शांति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, आनंद और शक्ति है। सचमुच मेरा स्वरूप शांत स्वरूप है। वास्तव में मैं आत्मा, पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, सच्चाई, सत्यता, स्वच्छता, यही मेरी शक्तियां हैं। मैं प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा। शांति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, चार पिलर हैं। मन, बुद्धि स्थिर है। शांति, पवित्रता के आसन पर विराजमान में आत्मा, अपने सर्वशक्तिवान शिव पिता के सामने हो। आने दें स्वयं में ये शांति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम की शक्तियां, किरणें सचमुच यही मुझ आत्मा का खजाना है। सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा के सानिध्य में मैं आत्मा पवित्रता, प्रेम और शक्तियों से संपन्न हो रही हूं। और बुद्धि स्वीकार कर रहे हैं सर्वशक्तिवान से नाता ही मुझ आत्मा का सच्चा नाता है। सर्वशक्तिवान शिव पिता ही मुझ आत्मा के सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु हैं। प्यार से, मन की भावना से आवाज निकल रही है, वाह शिव बाबा, आपका सानिध्य पाकर मैं आत्मा प्रसन्न प्रफुल्लित हो उठी। मैं आत्मा आपका आज्ञाकारी निष्ठावान सच्चा बच्चा हो। सच, सर्वशक्तिवान भाग्य विधाता, वरदाता परमात्मा की मैं संतान, कितनी न भाग्यवान मैं आत्मा हूं। ये रूहानी स्नेह शक्तियों के वाइब्रेशन मैं आत्मा पूरे ही विश्व में फैला रही हूं। प्रकृति के पांचों ही तत्वों को शक्तियों का दान दे रही हूं। हर आत्मा प्रसन्न रहे,
हर तत्व सदा सहयोगी रहे। सर्वशक्तिवान शिव बाबा की शक्तियां समेटते हुए मैं आत्मा शुद्ध पवित्र शक्तिशाली आत्मा पुनः अपने कार्य क्षेत्र की ओर जाने के लिए तैयार। इसी शुद्ध पवित्रता की शक्ति से संपन्न आप जहां भी बैठे हैं अपने दाएं बाएं एक दूसरे को देखते हुए ये वाइब्रेशन दें। मुस्कुराएं। पुनः अपने कार्य क्षेत्र की ओर आ जाए। ओम शांति। अंत में एक छोटी सी बात, पुनः साइलेंस में चलेंगे, पक्का करें शांत स्वर।
शिव की याद रहेगी तब आंखों में समाया होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब
कांटे से कांटा निकलता है, लोहा लोहे को काटता है। श्रेष्ठ संकल्पों से अपने संकल्प परिवर्तन होते हैं। आज से अभी से यही परिवर्तन लाएं कि बस अगर हमें बोलना है, सोचना है, तो केवल शुद्ध संकल्प ही लाने हैं। कोई संकल्प नहीं तो बस एक यही, मैं सर्वशक्तिवान की संतान। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा दीदी का। आवाज के दुनिया से हम सभी को पार ले गए, वो गहन अनुभूति हम सभी ने किया, आप सभी ने किया होगा, लेकिन फिर वापस जाकर के भी उसका जब अभ्यास करेंगे तो जरूर आप अपने आप के अंदर परिवर्तन देखेंगे। अभी मैं निवेदन कर रही हूँ हॉनरेबल श्री कलराज मिश्रा जी से, जो यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस न्यू दिल्ली से यहाँ पधारे हैं। आप अपना चीफ गेस्ट एड्रेस हमारे समक्ष रखें, हॉनरेबल श्री कलराज मिश्रा जी।
पूज्य दादी माँ, यहाँ सभी श्रेष्ठ मंचस्थ महानुभाव और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित भक्तजन, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं आज पहली बार इस पवित्र विश्वविद्यालय के आयोजन में आया हूं। स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। यहां के लोगों के अंदर की ऊर्जा से ऊर्जस्वित होकर मैं स्वयं अपने को धन्य अनुभव कर रहा हूं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का यह 80वां महोत्सव है। जिस मनोभाव से प्रेरित होकर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, विश्व में परिवर्तन परमात्म ज्ञान से ही संभव हो सकता है। और विश्व में परिवर्तन परमात्म ज्ञान से संभव होने का तात्पर्य, जब तक आध्यात्मिकता और भौतिकता का सामंजस्य नहीं स्थापित होगा तब तक हम विश्व को न तो दिशा दे सकते हैं, न ही अपने देश के आधार स्तंभ भारतीय संस्कृति को लोगों के सामने उसके अनुरूप प्रस्तुत कर सकते हैं। और मैं कह सकता हूं ब्रह्मा दादा, जिनकी बार बार चर्चा हो रही है, उन्होंने अपनी विशिष्ट प्रेरणा के आधार पर स्वयं शिव का साक्षात्कार करते हुए अपने अंदर की अनंत शक्ति और अपने अंदर के आत्मविश्वास, इसके विस्तार के पश्चात अनुभूति जन्य ज्ञान जो उन्होंने बिखेरा, उस ज्ञान का ही यह रूप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है, अगर ये मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब तक परस्पर की संवेदनशीलता नहीं निर्माण होगी तब तक एक दूसरे के प्रति न तो हम सकारात्मक भाव पैदा कर सकते हैं और न ही उसके प्रगति के अंतर्गत सहयोगी होते हुए स्वयं की प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि अपने यहां अभी गीता का उद्धरण दिया आदरणीय सुषमा जी ने, स्वयं वहां कहा है ब्रह्मार्पण ब्रह्मामिर ब्रह्मांगनु ब्रह्माहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना, सब ब्रह्म के अंदर विद्यमान है। वो ब्रह्म क्या है? वो अनंत है, व्यापक है, व्यापकता को ही ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। उस व्यापकता के अंतर्गत हम सब लोग हैं, और जब व्यापकता के अंतर्गत हम सब हैं तो मानव मानव के बीच में संघर्ष कैसा, मानव मानव के बीच में द्वेष कैसा, फिर एक दूसरे के कुशल क्षेम के प्रति चिंतित क्यों नहीं होते। और इसलिए अपना एक मंत्र कहा गया जिसको बार बार दोहराया जाता है, ओम सहना ववतु सह नव भुनत्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु माविद विषावहि। ओम सहना ववत का अर्थ ही है हम सब लोग मिलकर एक दूसरे की रक्षा करें, सह नव भुनत्तु हम सब लोग मिलकर एक दूसरे के कुशल क्षेम के बारे में चिंता करें, हम सब लोग मिलकर शक्ति का वर्धन करें, लेकिन एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव नहीं रखें। यही सबका साथ सबका विकास कहलाता है, जिसको आज हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्र के रूप में आचरित किया है। क्योंकि आध्यात्मिक तत्व को अच्छी तरह से जो भी व्यक्ति समझता है उस आध्यात्मिक तत्व के आधार पर उसका आचरण व्यवहार होता है, और मैं कह सकता हूं कि इस आध्यात्मिक तत्व के अनुभूति के कारण ही प्रथम बार जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए और व्हाइट हाउस में जब उनको भोजन पर आमंत्रित किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरा आज उपवास है। लोगों ने कहा किस बात का उपवास है? तो उन्होंने कहा नवरात्रि का व्रत है। ये नवरात्रि का व्रत लोगों के लिए एक आश्चर्य का विषय लग रहा था। उन्होंने कहा मां दुर्गा का समय है, हमारे यहां हमने हमेशा मातृशक्ति को प्रमुखता दी है, यह विश्वविद्यालय मातृशक्ति को जागृत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, और विश्व के अंदर मातृशक्ति की अगुवाई के आधार पर विश्व को हम दिशा प्रदान करेंगे, यह एक संदेश भी दे रहा है यह प्रजापति ब्रह्मा विश्वविद्यालय ईश्वरी विश्वविद्यालय। उस मातृशक्ति का हम आराधना कर रहे हैं और उस मातृशक्ति की आराधना कर रहे हैं उसके लिए हम उपवास हैं, उसके लिए उपवास है, इसलिए हम खाना नहीं खाएंगे वहां, ये भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा। उनके अंदर का आध्यात्मिक तत्व लोगों के सामने प्रस्तुत करने में संकोच नहीं हुआ, सहज रूप से लोगों के मन के अंदर यह भावना जागृत हुई कि नवरात्रि व्रत क्या होता है, मां दुर्गा क्या होती है। उनका मां दुर्गा जहां करुणा की सागर है, दया की सागर है, वहां अत्याचारियों अनाचारियों के विनाश करने के लिए सक्षम है एक ऐसी वीर है, एक ऐसी योद्धा है कि जिसके सामने आसुरी शक्ति आएगी तो उस आसुरी शक्ति के विनाश के लिए भी सक्षम है, ऐसी मां दुर्गा है, उसकी आराधना कर रहा हूं। यह आध्यात्म तत्व को अपने आचरण व्यवहार के माध्यम से जागृत करना, आध्यात्म तत्व के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर योग को विश्व के अंतर्राष्ट्रीय योग बनाकर एक सुनिश्चित दिवस निर्धारण करने की दिशा में जो स्तुत्य कार्य उन्होंने किया है, मैं समझता हूं आध्यात्म और भौतिकता दोनों का जबरदस्त एक सामंजस्य है, यह स्वरूप दिखाई पड़ता है। और इसके लिए हमने सुना कि कल प्रधानमंत्री जी का यहां उद्बोधन था, उद्बोधन में उन्होंने कहा कि ठीक है मानव के प्रति संवेदनशील होते हुए उस संवेदनशीलता के आधार पर जो काम करने की कोशिश की गई है उसमें सबका योगदान होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने दरिद्र नारायण की बात कही थी, दरिद्र नारायण की जब तक सेवा नहीं होगी तब तक हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। उन्होंने शिक्षा के ऊपर बल दिया था, शिक्षा जब तक आध्यात्म प्रधान नहीं होगी जिसमें भौतिकता का पुट होगा, दोनों को ठीक से रहते हुए जो अपने आप परिभाषित है, जदा निश्चय ससी दिश धर्म ये कहा गया है, निश्चय के आधार पर भौतिकता और आध्यात्मिकता के दोनों के मिश्रण के आधार पर जहां का शिक्षा का आधार बनता है, सही माने में वही शिक्षा हमारे यहां व्यक्ति के चतुर्दिक व्यक्तित्व का विकास करती है, इस पर उन्होंने जोर दिया था। आत्मविश्वास का जागरण साक्षात परमात्मा से अपने को जोड़ने के बराबर होता है, इस बात को लगातार उन्होंने कहा था। अब मैं कह सकता हूं कि यह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो पूज्य बाबा ब्रह्मा जी से के प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। बताया गया कि 137 देशों में इसका विस्तार है और इस शिक्षा के माध्यम से भारतीय संस्कृति की आधारशिला को रखते हुए नैतिकता को प्रमुखता देते हुए किस ढंग से व्यक्ति के जीवन में वो आचरित हो सके और धर्म को सही तरीके से समझते हुए धर्म के बारे में विभिन्न प्रकार की धारणाएं लोगों की बनी है, लेकिन मैं तो मनु के उस धर्म की परिभाषा को उद्धृत करना चाहूंगा, दिदक्षमा दमस्तेयम शौचम इंद्री निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये नैतिकता से युक्त है, ये धैर्यवान होना क्षमावान होना ये नैतिकता है, विद्यावान होना नैतिकता है, चोरी नहीं करना नैतिकता है, अक्रोध होना नैतिकता है। ये जब तक शिक्षा के साथ जोड़ा नहीं जाएगा तब तक जो हम कल्पना कर रहे हैं विश्व को आगे बढ़ाने की दिशा में, जो हम कल्पना कर रहे हैं कि भारत के माध्यम से हम पूरे विश्व को बदल देंगे, वो संभव नहीं हो सकता। यह ईश्वरी विश्वविद्यालय उस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। अभी राजयोग के बारे में आदरणीय बहन सुषमा जी ने बताया है, आपने बहुत ठीक बताया है, राजयोग इसको राजनीतिक नहीं मानना चाहिए, राज का मतलब राजनीति नहीं, ये सही माने में जीवन शैली है। स्वाभाविक रूप से मन के अंदर सात्विकता का भाव आध्यात्म से पैदा होगा और उस सात्विकता के भाव को पैदा करते हुए सहज रूप से योग आसन करते हुए अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना और अपने जीवन को चलाने के लिए सारी मर्यादाओं मान्यताओं को ध्यान में रखकर काम करना, मैं जहां तक समझ पाया हूं यह राजयोग के अंतर्गत आता है और इसका अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। यही एक मूल भाव है जिस मूल भाव को लेकर चलने की जरूरत है। आज बड़ा सौभाग्य है क्योंकि लोग कह सकते हैं कि शायद आप बोल रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं स्वयं अनुभव करता हूं इसलिए बोल रहा हूं, भारत के प्रधानमंत्री के अंदर वो गुण हैं, आप देखते होंगे अथक परिश्रम करते हैं, अगर मैं कहूं कि 2400 घंटा काम करते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि थकान नाम की चीज नहीं है। किसके लिए करते हैं? गरीबों के। और लगातार इस बात पर जोर देते हैं पारदर्शिता। ये पारदर्शिता क्या है? नैतिकता है। पारदर्शितापूर्ण काम करना, नैतिकता को बढ़ाते हुए प्रामाणिकता और ईमानदारी का समुचित तौर पर अपने व्यक्तित्व को लोगों के सामने प्रस्तुत करना। अगर ये शुरू हो जाएगा भ्रष्टाचार पथ सामने आने नहीं पाएगा और विकास का स्वरूप स्वाभाविक रूप से बढ़ता जाएगा। और जिस तरीके से हम सृष्टि को आगे बढ़ाने की दिशा में, भारत को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे, वो आगे चलती जाएगी, एक अच्छी स्थिति का निर्माण होगा। ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, ईश्वरी विश्वविद्यालय एक सृजन का स्वरूप है, सृष्टि का स्वरूप है। और सृष्टि और सृजन उसके ऊपर आधारित है जो हमारे धरती से प्राप्त है, जो प्रकृति से प्रदत्त है। हमारे प्रकृति के प्रदत्त जो सद्गुण हैं, जो सारी चीजें हैं, वो इस प्रकार की हैं कि लोगों को जीवन प्रदान करती है। जीवन प्रदान करने वाला जो सृष्टि है, जीवन प्रदान करने वाला जो सृजन है, उस सृजनकर्ता के रूप में अगर मैं कहूं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय है, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, न इसमें कोई हम ज्यादा कहते हैं जो हमने इसको अध्ययन करने का थोड़ा प्रयास किया है। उस दिशा में काम कर रहे हैं और इसलिए मातृशक्ति को आगे बढ़ाकर सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, ये तीनों के स्वरूप को जागृत करते हुए, एक तरफ शक्ति का प्रतीक दुर्गा, ज्ञान का प्रतीक सरस्वती और संपत्ति और क्षेम कल्याण का प्रतीक लक्ष्मी, तीनों के प्रतीक के रूप में हम किस तरीके से मां बहनों को सामने रखते हुए भारत को फिर से दुनिया के अंदर विश्व गुरु के सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर सकते हैं। अगर ये दिशा कोई दे रहा है तो मैं कह सकता हूं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय उस दिशा में आगे बढ़ रही है। इसमें किसी भी प्रकार का मुझे संदेह नहीं लगता है और निश्चित रूप से उस दिशा में जाएगा, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। जिस समर्पण की भाव से, जिस समर्पित स्थिति से यहां सब लोग उपस्थित हैं, निश्चित रूप से उस प्रकार का प्यार, उस प्रकार का श्रद्धा, यहां के लोगों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनको आदर्श व्यवहार को देख करके उत्पन्न हुई है। हमारे बीच में दादी मां बैठी हुई है, प्रेरणा की स्रोत है, अस्वाभाविक है। उनको देखकर और हमारे यहां और मातृशक्ति यहां बैठी हुई है जिनका आचरण व्यवहार स्वयं अपने में कह रहा है, स्वयं अपने में इस तरीके से प्रेरित कर रहा है लोगों को कि लगता है कि ये हमारे सामने रहे तो स्वयमेव शक्ति का अपने अंतर्गत आत्मसात होगा। शक्ति बाहर नहीं जा सकती और शक्ति को केंद्रित करके हम जैसा करना चाहें कर सकते हैं, ऐसे लोग हैं। इसके कारण ये ईश्वरी विश्वविद्यालय निश्चित रूप से अपने देश को भी दिशा देगा, बाहर के देश को भी दिशा देगा। यही बात कहकर मैं सबको प्रणाम करते हुए, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए मुझे बोलने का, अपना विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार ऑनरेबल श्री कलराज मिश्रा जी का। आपने बहुत सुंदर कहा कि राजयोग एक जीवन पद्धति है, लाइफस्टाइल है। उसको जब हम लाइफस्टाइल में उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, धारण करते हैं, तो जरूर स्व परिवर्तन दूर नहीं होगा। अभी जिस घड़ी के लिए हम सभी इंतजार कर रहे थे, जो उठ के जा रहे हैं उनसे नम्र निवेदन है, थोड़े समय के लिए जरूर बैठे, क्योंकि अभी हमारे बीच परमादरणीय दादी जानकी जी उपस्थित है। हम सभी दादी जी के उद्बोधन हम सभी सुनेंगे, तो इसीलिए सभी बैठे रहेंगे। थोड़े समय के बाद यह कार्यक्रम पूरा होने जा रहा है। अभी हम सभी परमादरणीय दादी जानकी जी से आशीर्वचन सुनेंगे।
हम दो बारी, तीन बारी ओम शांति कहेंगे, सभी मिल करके कहेंगे ओम शांति, ओम शांति, वंडरफुल, ओम शांति, ओम शांति। हम तीन बारी ओम शांति से ले कहती हूँ, ये अंगुली बताती है मैं कौन हूँ, मैं कैन कौन हूँ, मेरा कौन है, मैं हूँ आत्मा, मेरा है परमात्मा बाप सर्वशक्तिवान ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुझे कल से लेकर के ख्याल आया, 80 साल बाबा को हुए, मैं भी बाबा के पास 80 साल से हूँ, सारा बाबा ने जो सिखाया, बाप शिक्षक सतगुरु तीनों रूप से ऐसी अच्छी शिक्षाएं सैद करके सुनाई, उसे पहचानना है मैं कौन हूँ। नेचुरली है कल भी इस टाइम ये गीत बजाया, जहाँ मेरा तन होगा वहाँ मेरा मन होगा, तो अभी सभी का मन कहाँ है, मन कहाँ है, जहाँ तन है न, मन राज्यों की जीवन ऐसी वंडरफुल है, जो कर्म योग भी है तो राजयोग भी है, सहज योग भी है, और सदाई मीठा बनने के लिए भी। हम ऐसे 5 बातें हमारे लाइफ में सदाई होना जरूरी है, एक भी मिस न होए। पहली यह लाइफ है निम्रता, जरा भी अपमान न हो, सत्यता, दूसरा सत्यता, जब निम्रता और सत्यता है तो दीजता भी है। निम्रता सत्यता दीजता पर क्या नेचुरल है, मधुरता है, मधुरता होने से जहाँ भी है अपनी संतुष्टता नेचुरल है। तो ये जो 5 गुण नेचुरल लाइफ में है, तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो सीखने को मिला है, तो मुझे तो आया 80 बातें लिखनी चाहिए, 80 साल हो गए है ना, ठेकेदारी बहन कैसे विद्वान भाई बैठा है, हम लिखेंगे कदम कदम पर। मुझे एक बार जरूर याद आती है, मैं बाबा सीढ़ी के ऊपर बैठा था, हम नीचे बैठे थे, बाबा ने कहा पांव ऐसे करो, देखो हमने पांव ऐसे किया, मुझे वो घड़ी भूलती नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे कदम कदम में पदमों की कमाई होंगी, इसलिए बाबा कदम वैसे कराया। तो आज मैं देखा है सारी लाइफ में जो कदम कदम में पदमों की कमाई, माना मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, न मेरे पास 5 पाउंड होंगे न 5 रुपया होगा, मैं क्या करेंगे, परंतु लाइफ की वैल्यू कितनी बड़ी जबरदस्त है। हम जैसे अच्छे लाइट बनेंगे, माइट लेंगे बाबा से, आत्मा लाइट, लाइट में दो अर्थ है, एक हल्का है दूसरा लाइट दिखाई पड़ती है। बहन ने कहा सुषमा ने ये आंखें खोली हो, क्यों अभी आप देखेंगे हम भाई बहने दृष्टि से मीठी दृष्टि है, बात दृष्टि में पांच बातें भरी पड़ी है, निम्रता सत्यता धीरता गंभीरता मधुरता। तो ये क्या है जैसे के नेचुरल स्वभाव कैसा होना चाहिए, जो हम एक दो को देख मुझे कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, जब तुम्हारे सामने कोई मिलने के लिए आते हैं तुम्हारी क्या भावना होती है, तो मैंने कहा भावना मेरी है यही है हम एक के हैं, हम एक है, समझा मेरी बात, हम सब एक के हैं, हमारा बाप एक है, अब हम सब भी एक है। ये अंगुली बहुत काम की है, पांचों अंगुली बराबर नहीं है, ये छोटी है ये मोटी है, ये छोटी है ना ये मोटी है, ये छोटी अंगुली संयोग से जो हमारे मृत्युदेव भाई ने जितना भी उमगुलास है अंगुली का काम लिया है, सब ये अंगुली ये टीका लगाते हैं, ये विजडम की है, ये है सब कुछ है। परमात्मा बाप मेरे साथ ही है, पर ये और ये दृढ़ता दृढ़ता के देखा बहुत अच्छा फायदा है दृढ़ता से, तो दृढ़ता और ये दोनों मिल गए आपस में तो क्या कैसी क्वालिटी हो गई, वंडरफुल। सभी ऐसे देखो कैसे समझदारी से मेरे, हम कौन है किसके है, हम कौन है किसके है, क्या कर रहे हैं। ओम शांति में ये सब फायदा है, मुझे क्या करने का है, करावन हार करा रहा है, मुझे कुछ नहीं करना है। मेरा सदन रात का अनुभव ये है, ये साइड में राइट साइड में भगवान मेरा साथी है, एकदम अच्छा है, यहाँ मेरा भाग्य है, तो यहाँ मेरा भाग्य, यहाँ भाग्य है, यहाँ भगवान साथी है। अब मुझे क्या करने का है, जो भगवान ने मेरे साथ दिया है, जैसे बाबा को मुझे बाबा की एक बात हमेशा याद आती है, बाबा टेबल पर खाने पर बैठा था, मैं भी बैठी थी, कहा बच्ची मैं तेरे को खिलाऊं या तुम मेरे को खिलाएंगी, ग्राही बनाई, कहा मैं तेरे को खिलाऊं या तुम मेरे को खिलाऊं, मैंने कहा बाबा मैं आपको खिलाती हूँ आप मुझे खिला लो, इतना प्यार भरा। अपने ऐसी बहुत बातें छे छे से है जो बाबा ऐसा याद दिलाता था, एक बारी कहा तुम्हारा योग ठीक नहीं है, मैंने कहा बाबा योग ठीक नहीं है, बाबा मुझे बताओ क्या है कमी क्या है, कहा तुम थोड़ा थोड़ा कोई घड़ी थोड़ा अपर में नाव में धोती हो, वो दिन आज का दिल हिम्मत बच्चे मदद बाप सच्ची दिल पर साहेब राजी, ये ऐसा याद है जो कभी भी ये नहीं होता मैं कैसे करूंगी क्या करेंगी, मैं कैसे करूंगी क्या करेंगी, कभी ये ख्याल आ ही नहीं सकता, कराने वाला करा रहा है, हमको क्या करने का है, हमको दो पर दो पांच पर चलना है, सात साल की कोई उम्र का होता है तो कहेंगे 60 तो ढाई लाख, आज 100 साल हो गए हैं तो भी लाठी नहीं उठानी पड़ी है। ये किसकी मदद है? मेरे बाबा की। इतनी हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप की, सच्ची दिल पर साहब राजी। और तीसरी बात, नियत साफ है ना, तो जो संकल्प करो तो हो जाता है, हो जाता है। बाबा बैठा है, किसके है कौन है, तीन शक्तियां हर समय बाबा की यूज होती है। बताऊं क्या, एक शक्ति है सहन शक्ति। सारी लाइफ में मैंने ये नहीं कभी किसको कहा था मैं ये सहन नहीं कर सकती हूँ ना। क्या है, क्या सहन है? पांच गुण अगर मेरे में है, धीरता, निम्रता, सत्यता, गंभीरता, मधुरता, ये है, तो मैं कभी नहीं कह मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। जो सहन करते हैं तो बड़ी बात नहीं है। समझने की शक्ति और समझने की शक्ति दो बातें, बात कभी भी उसमें विस्तार में न जावे, थोड़ा समझा मेरा हाथ समझ। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, समा लिया या समझ लिया। सहन करने में बहुत मीठा बन जाते हैं, मुस्कुराते हैं, कोई बात मुश्किल नहीं है। ये भी बाबा ने मुझे बच्ची को बताया, बच्ची ये गीत गाती हो ना, मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। ये सभी को मैं सुना रही हूँ, बाबा को गीत ये गाती हो ना, मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। अभी सब मुस्कुरा रहे हो, कोई बात नहीं। इतना सारे 40 साल विदेश की सेवा के लिए बाबा ने निमित्त बनाया। हमारे बड़ों ने कहा बाबा अव्यक्त हुआ है, अभी क्या करने का, कहा जाकर जानकी को बोलो। मैंने कहा अच्छा, तो जयंती बन अभी यहाँ नहीं है, उनका माँ बाप लंदन में था, हम वहाँ गई। पहले 13 पाउंड में कमरा लेकर के सेवा कर शुरू की, आज वहाँ ग्लोबल हाउस रिट्री सेंटर बाबा ने सेवा स्थान ऐसे बनाए हैं जो बड़ा अच्छा सेवाएं हो रही है। ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों ही सब्जेक्ट में एक्यूरेट रहना, ये हम सब का फर्ज है। ज्ञान भी टू मच बोलने के लिए नहीं है, योग रहने के लिए। धारणा ऐसी हो जो मैं भी खुश, सब मेरे से खुश, खुशी जैसी खोराक नहीं, चिंता जैसा मर्ज नहीं, चिंता करने आता नहीं, खुशी, सब खुश है, ये खुश है ना, सब खुश है, बस सब खुशी है। तो बाबा भी हमारे को देख, बच्चे खुश है ना, बाबा भी देख बच्चे खुश है, तो बच्चे तू चिंता नहीं करो, मांगो नहीं, मांगने से मरना भला, मांगो कभी कभी भी कोई भी। मैंने हंसी में कल दादी को कह दिया एक दादी, तो मांगने से जो क्या अच्छा नहीं लगता है, परंतु वंडर तो ये है, याद करूंगा। हाँ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए सभी ऐसे साइलेंस में शांत रहना, मना साइलेंस में जाना, कोई संकल्प न हो। गीत बजाने वाला शांति वाला थोड़ा 2 मिनट का गीत बजाओ मेरा भाई।
शांति सागर की
बहुत बहुत धन्यवाद परम श्रद्धेय दादी जी का। अभी मैं मृत्युंजय भाई से निवेदन करती हूँ कि मंचासीन अपने मेहमानों का अभिनंदन करें, अभिवादन करें, और साथ साथ भरत भाई जी जो शांतिवन में जो भी आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं उसका कंस्ट्रक्शन जो इंजीनियर है यहाँ, उनसे निवेदन करती हूँ वोट ऑफ थैंक्स सबके प्रति प्रस्तुत करेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि भोजन करके तुरंत वापस आए आधे घंटे में। बहुत सुंदर कल्चरल प्रोग्राम इस हॉल में होने जा रहा है। बॉलीवुड से ग्रुप आया हुआ है, वैल्यू बेस्ड कल्चरल प्रोग्राम, बहुत सुंदर प्रस्तुति रहेगा। तो इसीलिए भोजन करके तुरंत आप सभी वापस आ जाएं।
ओम शांति। सभी से निवेदन है कि 5 मिनट बैठे रहे। दादी जी हमारे बीच में बैठे हैं, सभी मेहमान बैठे हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में परमपिता परमात्मा की सभी दिव्य संतानों, आदरणीय दादी जी, मंचासीन सभी महानुभाव, आज हम सभी 80 साल पहले परमपिता परमात्मा शिव इस धरती पर आकर के इस ज्ञान यज्ञ की रचना की, एक ज्ञान यज्ञ की शुरुआत की। ऐसा ये महान यज्ञ स्थापन हुआ, ऐसा यज्ञ जो कि गीता में भी इसका गायन है कि रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो ऐसा यज्ञ 80 साल से चल रहा है और ये तब तक चलेगा जब तक इस यज्ञ में आहुति पूर्ण ना हो। तो ऐसा ये विशेष यज्ञ है जिसको हम कहेंगे ज्ञान का यज्ञ है, योग का यज्ञ है, विकारों को समाप्त करने का यज्ञ है, अवगुणों को खत्म करने का यज्ञ है। तो ऐसा ये महान यज्ञ, ये अनोखा यज्ञ स्थापित हुआ है और ऐसे यज्ञ से फिर से नई दुनिया की स्थापना होगी, भारत स्वर्णिम भारत होगा। ऐसे यज्ञ में सभी आज हमारे बीच में यहाँ पहुँचे हैं, विशेष करके भारत सरकार के मंत्री जी श्री कलराज मिश्रा जी, जो यहाँ आकर के इस यज्ञ में भाग लिया, हम सबको प्रेरणा दी। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बीच में जम्मू एंड कश्मीर से श्री कविंदर गुप्ता जी, स्पीकर विधानसभा आप भी पहुंचे, आपका भी बहुत अभिनंदन है, धन्यवाद है। हमारे बीच में श्री ललित कुमार साइंटिस्ट एंड चेयरमैन DRDO आप भी पहुंचे और इस यज्ञ में भाग लिया, आपका भी बहुत बहुत थैंक्स है। हमारे बीच में श्री महादेव जानकर जो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री है आप भी पहुंचे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे बीच में राजू रंजन नाग आप भी यहां पहुंचे, आपका भी बहुत धन्यवाद है। प्रोफेसर राधा माधव दास, डॉक्टर गजाली ठाकुर सत्यप्रकाश जी जो पूर्व मंत्री हिमाचल प्रदेश है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे बीच में श्री लोकेश मुनि जी, विशंबर नेवर जी आप भी पहुंचे, आपका भी बहुत धन्यवाद है। और विशेष हमारे बीच में चक्रधारी दीदी दिल्ली से, BK सुषमा दीदी जयपुर से, गोदावरी दीदी बॉम्बे से यहाँ पहुंच करके हमें लाभान्वित किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में भ्राता ब्रिजमोहन जी जो हमारे वरिष्ठ भ्राता जी है, आप भी हमारे बीच में उपस्थित रह करके हमें लाभान्वित किया, आपका भी बहुत धन्यवाद। और भ्राता मृत्युंजय भाई जो इस सारे कार्यक्रम के आयोजक के निमित्त बने, आपने सबको बुलाया और सबको लाभान्वित किया, आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और खास हमारी आदरणीय दादी जी जो कि ब्रह्मा बाबा ने आपको निमित्त बनाया इस यज्ञ संचालन में, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के लिए आप हमारे बीच में उपस्थित होकर के हमें बहुत प्रेरणा दी और पूरा आभास कराया कि इस ज्ञान यज्ञ के अंदर क्या क्या निकलता है, कितने गुण निकलते हैं, कितनी शक्तियां निकलती हैं, वो हम सभी ने अनुभव किया। तो ऐसी दादी जी आपका भी बहुत तहे दिल से आप सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन बहुत सुचारू रूप से किया हमारी BK सुमन बहन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने वाले रशियन ग्रुप और चेन्नई का ग्रुप जिन्होंने बहुत अच्छा सुंदर डांस प्रस्तुति दी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी यहाँ देश विदेश से सभी भाई बहने पहुंचे और आप सबका भी सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम शांति, ओम शांति। और साथ ही हमारे बीच में यामिनी बहन पांचाल आप भी हमारे बीच में उपस्थित रहे, आपका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है। ओम शांति। एक बहुत अनोखी चीज दादी जी को भेंट की जा रही है जो 3D प्रिंटर से ये शील्ड बनाया है, दादी जी को भेंट किया जा रहा है। आप सब देखेंगे बहुत अच्छी चीज बनी हुई है।